ओम शांति। हम अभी अपने सभी वरिष्ठ जनों का मंच पर आह्वान करते हैं। दीदी हमारे बीच आ गई हैं, एक हाथ की ताली से दीदी का अभिनंदन करेंगे। मैं आदरणीय मृत्युंजय भाई जी को भी अनुरोध करूंगा, वो भी मंच पर आए। सुमन बहन जी, टोंक की रानी बहन जी और संजय भाई मंच पर आएंगे और मंच पर विराजमान होंगे। हम अपने सभी बड़ों का एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जो हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच पहुंचे हैं। और आप सभी का भी मधुबन के ज्ञान सरोवर के इस पावन भूमि में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक मिनट प्यारे बाबा की स्मृति से हम आज के इस उद्घाटन सत्र की शुरुआत करेंगे। आह्वान करते हैं प्रथमतः प्राणेश्वर बाप दादा का। प्यारे बाबा का ये बेहद घर जहां आने को सब आतुर होते हैं, और लॉकडाउन के एक लंबे अंतराल के पश्चात आप सब वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो प्रथमतः मधुबन के इस वरदानी भूमि में पहुंची हैं। तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं ना, तो अपने लिए जोरदार ताली तो बजा लें। बाबा की नजर विशेष आपके भाग्य और भविष्य पर, उनका आशीष जो हम यहाँ पहुंच पाए, और साथ ही आप सब ने भी अपने बिजी शेड्यूल से ये वक्त निकाला और ये सुंदर चांस लिया। तो सचमुच ये 3 दिवसीय जो भट्टी है जीवन के लिए यादगार बनेगी, हमें भरपूर करने के लिए। बाबा ने बुलाया है, हमारे बड़ों ने हमें यहाँ पे बुलाया है, तो इसका पूरा पूरा आनंद लेंगे। वैसे भी जुलाई मास दीदी का मास है और दीदी का स्लोगन हम सबको पक्का है, अब घर जाना है। तो उस घर, फाइनल घर जाने से पहले आप अपने इस बेहद घर में पहुंचे हैं, इस बात की खुशी, इस बात का आनंद आपके चेहरे से झलक रहा है। भले मास्क लगे हुए हैं लेकिन चेहरे के मुस्कान तो दिखाई दे जाती है। आपको मास्क लगा करके ही रखना है, मुस्कान दिखाने के लिए मास्क नहीं उतारना है। तो पुनः पुनः आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा, तेजपुर आसाम से हमारे बीच कमला बहन, मीनू बहन पहुंचे हैं। वो वहां की ट्रेडिशनल जो एक स्वागत होता है गमछे के माध्यम से हमारे वरिष्ठ जनों का, वो इसके माध्यम से स्वागत करेंगे। आप सब भी करतल ध्वनि से इसमें शामिल होंगे, आप भी इस स्वागत की श्रृंखला में शामिल हैं। आज आप खुल के तालियां बजा सकते हैं, कल से मौन रहना है आपको। मैं अनुरोध करूंगा नितिन भाई और कमलधर, एक मिनट, नितिन भाई और गोविंद भाई भी मंच पर आ जाएं, इनका भी, हमारे दोनों भाइयों का भी सुंदर स्वागत गीत लेकर हमारे नितिन भाई और गोविंद भाई हमारे बीच हैं। हमारे दोनों ही भाई बहुत प्यार से गीतों की रचना भी करते हैं और साथ ही साथ सभी का प्यार से अभिनंदन भी करते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कि खुशी के गीत गाते चलो, परीक्षा के समंदर में मुस्कुराते चलो, छीन कर आसमां से कामयाबी, निरंतर उड़ते और उड़ाते चलो। ऐसे ही सुंदर भावों को लेकर हमारे दोनों भाई आप सभी का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि स्वागत गीत हम सबके सम्मुख रखें, नितिन भाई, गोविंद भाई।
ये ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है। स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है। स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले। बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आधी वाले दिन बाबा फिर से हमें दिखाते हैं। 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में कराते हैं। बज रहे विनाश के हैं उधर नगाड़े। बिक रहे इधर है नवयुग के नगाड़े। अग्रिम दल के रत्नों का तप रंग लाया है। स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले। बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। अंतर्मुख हो आओ हम योग का करें प्रयोग। मनसा सेवा प्रकाश में मिलके करें सहयोग। शांत और एकांत मिला तप का ये मौका है। उड़ो पंछियों उड़ने से अब किसने रोका है। वाह बाबा वाह नामा दिल में अब गाया है। स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले। बाबा तंग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। ऐसी भट्टी हो जो यादगार बन जाए। और भट्टी की कोई दरकार ना रह जाए। योग भक्ति की ज्वाला आओ ऐसी जलाए, संसार से पुराने संसार सब जल जाए, निर्विघ्न रहने करने का मौसम आया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है, ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है, स्वागत करते रत्नों का बाबा मद बन वाले, बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले, शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम
बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार पुनः करसल ध्वनि से हम अपने दोनों भाइयों का स्वागत और धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत सुंदर प्रेरणा दी है कि ऐसी भट्टी कर लें जो और किसी भट्टी की दरकार न रह जाए। और 14 वर्ष की जो भट्टी हमारे पूर्वजों ने की, उस भट्टी को हमें 4 दिन में करना है, राइट? तो बहुत सुंदर प्रेरणा युक्त गीत के लिए शुक्रिया। और अब हम विधिवत भट्टी के उद्घाटन के लिए दीप प्रज्वलन की ओर चलेंगे। हम जानते हैं हमारी सुंदर परंपरा है, हर सुंदर शुरुआत दीप प्रज्वलन से हम करते हैं, जो हमें बहुत कुछ याद दिलाता है। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मंचस्थ सभी बड़ों का, दीदी का, भाई साहब का, सुमन बहन जी, रानी बहन, संजय भाई, और साथ ही हमारी टीचर्स बहनें जो सभा में हैं, वो सभी भी मंच पर आएंगे और इस सुंदर दीप प्रज्वलन में शरीक होंगे। दीप प्रज्वलन हमें हमेशा स्मृति दिलाता है कि हमें अपने आत्मदीप को जलाना है, दीपराज बाबा को भी सदैव अपनी स्मृति में हृदय में बसा कर रखना है। इसी सुंदर याद के साथ आगाज करते हैं इस सुंदर भट्टी का दीप प्रज्वलन। जैसे रोशनी होती है दीपक से, ऐसे स्वयं में हम ज्ञान प्रकाश भरें। एक सुंदर दीप प्रज्वलन से इस भट्टी का सुंदर आगाज करें। आगाज बहुत सुंदर, ये दीप हमारे आत्मदीप को अगले 3 दिनों तक सतत प्रज्वलित रखे और संकल्पबद्ध हों कि हम अपने इस दीपक के साथ औरों के दीपक को भी जलाते चलेंगे और दीप राज बाबा के सतत साथ रहेंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूं उनकी ओर, जिन्होंने हमें बहुत प्यार से यहां बुलाया है। मातृवत हम सबकी पालना करने वाले परमादरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी। दीदी इतनी सारी जिम्मेवारियों को संभालते हुए भी सदैव हल्के, सदैव सेवा में तत्पर, बिल्कुल एक्यूरेट, पंक्चुअल, हम सब इतनी सारी विशेषताओं की धनी हैं हमारी दीदी कि देख देख कर सीखते हैं, देख देख कर आनंदित होते हैं। बाप दादा की जैसे प्रतिमूर्ति, एक ऐसी विभूति जिनके सर पर हाथ रखकर स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी दी, और ऐसी अनमोल रत्न जिसे अब प्यारे बाबा और यज्ञ ने विश्वविद्यालय के जॉइंट चीफ की पदवी देकर सम्मानित किया। हम जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे, जिन्हें बाबा और यज्ञ ने पूरी ब्रह्म कुमारी के एक बड़े सुंदर जिम्मेवारी का ताज पहनाया है। तो हम अभिभूत हैं दीदी, और आपकी छत्र छाया में सदा ही आनंदित अनुभव करते हैं। अनुरोध करूंगा आपका आशीर्वचन और प्रेरणाएं हम सबको इस भट्टी के निमित्त दें दीदी।
ओम शांति। फिर से आपका स्वागत है ज्ञान सरोवर में। तो आप लोग ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाकर अपने को परिया बनाकर यहां से जाएंगे। अब संगम युग का अंतिम समय है, और इस समय हमको मालूम है कि इस वर्ष में हमारे कई भाई बहनों ने शरीर छोड़ा, कईयों ने बड़ी आयु के कारण, पर कईयों ने छोटी आयु में कोरोनावश होकर शरीर छोड़ा। बाबा कहते हैं शरीर का कोई भरोसा नहीं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, कभी ये कोरोना वायरस जैसी वायरस का अटैक होता है। तो क्या है, इसलिए बाबा कहते हैं अपने को एवर रेडी रखो। तो इस भट्टी में चेक करना है कि हमारा जो लक्ष्य है बाप समान बनना, तो बाबा और हमारे में कितना अंतर है, और वो अंतर को पूरा करने के लिए सदैव ज्ञान स्वरूप निरंतर योगी, कर्मयोगी, तपस्वी बनकर रहना। अमृत वेला में आप लक्ष्य रखना, साधारण योग ना हो, परंतु ज्वालामुखी या बीज रूप योग हो, क्योंकि यहाँ के वातावरण में जहां आपको कोई और सोचना नहीं है, खाना पकाना नहीं है, सफाई नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, घर की चिंता छोड़ के आए होंगे, और मेरा तो बस एक शिव बाबा ये धुन लगी रहे, क्योंकि बाबा कहते हैं अंतिम परीक्षा एक सेकंड में होगी, एक सेकंड में बाबा की याद अंतिम में होनी चाहिए और नष्ट मोह होना चाहिए। पेपर कब होगा मालूम नहीं, पर क्या होगा ये हमको मालूम है। इसलिए देखना है कि हमारा किसी में मोह तो नहीं है। मेरा तो एक शिव बाबा है, या मेरा पति, बच्चा, भाई, बहन, सेंटर, स्टूडेंट, क्योंकि कईयों का लौकिक से अटैचमेंट होता है, कईयों का अलौकिक से हो जाता है, अपने टीचर से हो जाता है, अपने स्टूडेंट से हो जाता है, अपने सेंटर से हो जाता है। तो ये भी सोने की जंजीर है। लौकिक से मोह है लोहे की जंजीर, तो इसलिए न लोहे की जंजीर हो न सोने की जंजीर हो, ये देखना है। और अपने में संपूर्ण पवित्रता धारण करनी है, क्योंकि घर जाने के पहले हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। जरा भी कोई भी विकारों का अंश मात्र न रहे। रोज बाबा हमें याद दिलाते हैं, आत्माभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। तो चेक करना है कि हम देहभान में तो नहीं आ जाते हैं। कोई चाहना तो नहीं है, क्योंकि जब बेहद का वैराग्य होगा तब तो बाप की याद रहेंगे। किसी में भी हमारा इंटरेस्ट है, नाम मान शान कपड़े गहने घूमने फिरने खाने पीने में, कहां भी यदि हमारा इंटरेस्ट है तो नेचुरली है बाबा के याद के बिगैर उस चीज व्यक्ति वैभव की याद आएंगे। इसलिए सबसे वैराग्य हो तब हमारी तपस्या पावरफुल होंगी, क्योंकि योगी तो हम हैं परंतु तपस्वी क्या है, वो लंबा समय याद में रहते हैं तपस्वी। तो हमें लंबा समय तपस्या करने का यहाँ चांस, क्योंकि घरों में रहते तो काम काज व्यवहार आदि में बिजी हो जाते हैं, पर यहाँ तो और कुछ नहीं है। इसलिए मन का भी मौन रखना, मन में भी संकल्पना है एक बाबा, वाचा का भी जितना हो सके शांत में रहना, और मोबाइल फोन उसको भी शांत कर देना। तो उससे क्या होगा, बस एक बाबा की याद रहेंगे। तो ये देखना है कि जैसे कहा शुरू में आपने, जो दादी आई उनको तो 14 वर्ष की भट्टी का चांस था, और हम लोगों को अपने बिजी स्केड्यूल में चांस नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ जो चांस मिला है उसका पूरा लाभ लेना। और चलते फिरते अपने को फरिश्ता समझना और घर जाओ, आजा अपने स्थान पर जाओ तो लोग कहे क्या हो गया आपको, आप तो फरिश्ते लगते हो। तो इतना यहां से बल भर के जाना जो आपको देखकर सब आश्चर्य खाए कि चार दिन में इतना परिवर्तन आ गया। तो बाबा ने आपको ये बहुत अच्छा चांस दिया है। वैसे तो हम लोग 1 अगस्त से करने वाले थे शुरू, परंतु आप में से कईयों ने बुकिंग कर ली थी, प्लेन की बुकिंग कर ली थी, इसलिए हम लोगों को हमने सोचा भी चलो बाहर शांति है, कोई कोरोना के यहाँ केस नहीं है, चलो शुरू कर देवे। तो इसलिए आपको चांस मिल गया है। तो बीच में हमारे 3-4 मास बंद था, यह आपकी पहली भट्टी शुरू हो रही है, तो आप बहुत खुश नसीब हो जो आपको ये चांस मिला है, उसका पूरा लाभ लेना। ओम शांति।
शुक्रिया दीदी। पहला चांस वैसे भी कुंभ में पहले स्नान और अंतिम स्नान का सबसे ज्यादा महत्व होता है, तो पहला स्नान करने वाले आप बड़े भाग्यशाली हैं ना, है? इसलिए जोरदार अपने भाग्य के लिए। और दीदी ने जो हमें प्यार भरी शिक्षा दी है उस शिक्षा को हम जरूर अमल में लाएंगे। तो एक हाथ की ताली से अश्योर करें, दीदी आपने जो भी कहा है हम 100% वो करेंगे। और दीदी हमारे बीच से अभी विदाई लेंगी, दीदी को अगले सेशन के लिए जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपके एक एक शब्द हमारे लिए अमूल्य रत्न है। जो आपने 3M हमें मेडिसिन दे दी है, कौन सी? मन का भी मौन, मुख का भी मौन और सबसे इम्पोर्टेंट मोबाइल का भी मौन। कौन कौन मोबाइल का मौन रखने में समर्थ हैं वो जरा हाथ उठाए। बहुत सुंदर, 3 दिन की बात है तभी ये भट्टी हमारे लिए यादगार बनेगी, तभी हम फरिश्ते स्थिति का अनुभव कर पाएंगे, गहराई में उतर पाएंगे। तो गहराई से इन धारणाओं पर हम जरूर ध्यान देंगे। अब अगले 3 दिन भाई साहब से अनुरोध है, भाई साहब आप बीच में यदि आप आ जाएं। अगले 3 दिन हम क्या करने जा रहे हैं, इन 3 दिनों की भट्टी का क्या सुंदर लक्ष्य और उद्देश्य हो, क्योंकि हम जानते हैं सागर में यदि एक नौका है, उस नौका के नाविक को ये नहीं पता कि उसे उत्तर में जाना है या दक्षिण में जाना है, पूर्व में जाना है या पश्चिम में जाना है, तो वो थोड़ी देर पूर्व की ओर बढ़ेगा, थोड़ी देर पश्चिम की ओर बढ़ेगा, लेकिन कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि जाना क्या है, करना क्या है, किस दिशा की ओर आगे बढ़ना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उस लक्ष्य और उद्देश्य को गहराई से समझें। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुमन बहन जी को कि इस भट्टी का लक्ष्य उद्देश्य हम सबके सम्मुख रखें। 5 वर्ष की अल्पायु से आप बाबा की गोद में आ गई हैं, ईश्वरीय पालना में पली बढ़ी हैं, आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करते ही अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका, मैनेजमेंट ट्रेनर और साथ ही एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर। ऐसी हमारी आदरणीय सुमन बहन जी हमें भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे।
ओम शांति। दीदी का बहुत अच्छा क्लास हमने सुना, बहुत अच्छे विचार हमने सुना। एक प्रकार से एक लक्ष्य हम सभी को मिल गया है, तो इसके आधार से कि क्या लक्ष्य लेंगे आप सभी भट्टी के लिए। इतने दूर दूर से आज इस भट्टी को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। भाई सब असम से आए हैं, कुछ राजस्थान से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, और कहाँ कहाँ से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, देखो आगरा से भी आए हैं। तो इतने दूर दूर से बाबा के बच्चे बाबा के घर में यहाँ पहुँचे हैं इसी लक्ष्य से कि भट्टी करे, तपस्या करे। इतना लंबे काल के बाद, कोरोना होने के बाद, अभी मार्च तक तो यहाँ प्रोग्राम्स चल ही रहे थे, मार्च से लेकर के अब तक। वैसे तो सभी प्रोग्राम्स फिक्स थे, लेकिन कोरोना होने के कारण से फिर कैंसिल करना हुआ। लेकिन आप सभी इतने भाग्यशाली है, इतने भाग्यशाली है, तो आपका तो यहाँ आने का हो गया। तो इसलिए इस भाग्य को हमेशा याद रखना, है ना। भगवान आए हैं संगम युग में भाग्य बांटने के लिए, और इस भाग्य को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। ये भी कहते हैं ना कि भाग्य के कारण से आप यहाँ आए हैं या भाग्य कमाने आए हैं, भाग्य के कारण से यहाँ आए हैं या भाग्य कमाने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? दोनों है। भाग्य था इतने भक्ति का फल मिल गया, भगवान मिल गया, बाबा मिल गए, बाबा ने हमें अपनाया, तो फिर अभी आए हैं भाग्य बढ़ाना है। बाबा कहते हैं कर्म भाग्य का कलम आपको दिया है, जितना बढ़ाना चाहो उतना लंबा खींच सकते, जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, है ना। तो अभी जो समय अभी मिलता है हमें, अगले 3-4 दिन जो हमें मिलेगा, तो उसमें पूरी तरह हम अपने साथ समय बिताने का लक्ष्य रखें। क्योंकि पूरे कल्प में हमने क्या किया है, सत्ययुग त्रेता युग में सुख तो था ही, लेकिन वहां भी संबंधों में उलझे रहे, और द्वापर कलयुग में भी संबंधों में उलझे रहे, दुख तो वहां से शुरू हुआ, है ना। तो यहां भी संगम युग में आने के बाद भी फिर भी आत्माओं के साथ उलझे रहेंगे, तो क्या फायदा, क्या फायदा, है ना। तो संगम युग का एक खूबसूरत जो मौका है हम सभी के लिए, बाबा के संग का अनुभव, ये भी भाग्य है। बाबा ने हमें चुना है, आपने चुना है बाबा को या बाबा ने आपको चुना है, हा? हम कहाँ कहाँ थे, इतने कोने में साधारण रूप से थे, लेकिन भगवान कहाँ कहाँ से आप सभी को चुन करके यहाँ लाए हैं, बुद्धि को टच किया, फिर आप सभी को रियलाइज हुआ, बाबा ये अनुभव हुआ भगवान आए हुए हैं, तो फिर बाबा के को अपने समर्पण किया, है ना। बाबा ने हम सभी को चुना है, ये हम सभी का भाग्य है। तो इस जो ये जो समय है, तो पूरी तरह क्या करना है, अपने साथ समय बिताना है और बाबा के साथ समय बिताना है। और लेकिन उसके बीच में माया बिल्ली कहाँ से आ जाती है, माया बिल्ली कहाँ से आ जाती है, ये संकल्प आता है कि इतने दिनों के बाद इतने लोगों से मिलना हो रहा है, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, अभी तो घर में थे, चार दीवारों के बीच में, कोरोना काल में तो अकेले था, आइसोलेशन में थे, क्वारंटाइन में थे, बाहर जाने को नहीं मिल रहा था। अभी ये सुंदर मौका है लोगों से मिलने जुलने के लिए। अपना ही परिवार है, अभी नहीं मिलेंगे तो फिर बाद में फिर मिलने को नहीं मिलेगा, ये माया बिल्ली है ना। तो इसीलिए इन लोगों से तो हम कल हर कल्प में मिलते रहेंगे, हर युग में मिलते रहेंगे, हर बार मिलते रहेंगे, अलग अलग नाम रूप में है ना। मिलते रहेंगे कि नहीं मिलते रहेंगे, हम सभी मिलेंगे, सारे कल्प में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे अलग नाम रूप से हम मिलते रहेंगे है ना। लेकिन किन से हम नहीं मिलेंगे दोबारा? बाबा से नहीं मिलेंगे। तो अभी ये बहुत ही अमूल्य समय है, इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग जो है वो हीरे तुल्य युग है, क्योंकि बाबा इस समय में मिल रहे हैं। और दूसरी बात ये है, कौन सी जगह पर हैं आप? मधुबन तपोभूमि में है, ज्ञान सरोवर में है। वैसे तो शास्त्रों में कहते हैं डुबकी जब मान सरोवर में अगर डुबकी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? परिया बन जाएंगी। तो ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाएंगे तो क्या बनना है अभी? क्या बनना है? फरिश्ता बनना। जैसे दीदी ने कहा ना कि लास्ट जब जाएंगे घर तो सभी को ये अनुभव हो कि फरिश्ता बन करके आए हैं। तो ये जो लक्ष्य है तो सीरियसली लेना है। इसके लिए जो दीदी ने भी कहा, रुपेश भाई ने भी कहा, मौन, मौन बहुत ही सीरियसली करना है, बहुत दृढ़ता के साथ हमें करने की जरूरत है। मौन की, मौन का महत्व क्या है? तपस्या अगर करना है तो मौन बहुत 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 जरूरी है, मन का मौन। बाबा कहते बहुत ही हाई, बहुत ही ऊंचा लक्ष्य बाबा देते हैं हमें, मन का मौन करना है। लेकिन मन का मौन करना है तो उसके पहले पहला कदम कौन सा है? पहला कदम कौन सा है? मुख का मौन करेंगे, करेंगे वैसे भक्ति मार्ग में भी इसका बड़ा गायन है, बड़ा महत्व है। मौन रहेंगे तो वो जो मन है ना वो सेटल होता जाएगा। जितना हमारे जो शक्ति है, ज्यादा से ज्यादा जो खर्च होता है, किस बात में खर्च होता है पता है? किस बात में खर्च होता है? अपनी आत्मा की शक्ति। मेहनत करने से नहीं खर्च होता है, लेकिन बोलने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होता है। तो वो दरवाजा ही बंद कर दिया जहां वेस्ट हो रहा है, वो दरवाजा ही बंद कर दिया, तो फिर हम अपने मन और बुद्धि को कहां लगा सकते हैं? अपने में लगा सकते हैं। हाँ मुश्किल है, लेकिन फिर सहयोग भी मिलेगा बाबा का, क्योंकि स्थान भी पावरफुल है, संगठन भी पावरफुल है। और फिर जो क्लासेस आपको दिन भर में मिलेगा, अलग अलग बहुत सुंदर रीति से सारा प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक्टिविटीज भी है, क्लासेस भी है, उसमें मदद जरूर मिलेगा। तो इसलिए वो मदद लेकर के जितना ऊंचा लक्ष्य रखना चाहे उतना आप रख सकते हैं अभी के समय में। तो इसीलिए मुख का मौन बहुत ही जरूरी है। भले जब आप कमरों में जाएंगे, डाइनिंग में जाएंगे, तो थोड़ा बहुत जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी अंडरलाइन है, बहुत जरूरी है, तो फिर आप कैसे बोलेंगे? बहुत जैसे अवैध बाबा दादा बोलते, पता आपने सुना है ना अवैध बाबा कैसे बोलते हैं? विस्परिंग वॉइस, बहुत ही धीरे धीरे बोलते हैं। तो ऐसे बहुत जो आवश्यक है तो बहुत ही आवश्यक, बहुत ही थोड़े शब्दों में आप बोलेंगे, वॉल्यूम कम है ना। और अनावश्यक बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इधर उधर की बातें तो बिल्कुल नहीं शेयर करना है। एटलीस्ट ये लक्ष्य करें रखें 3 दिन, एटलीस्ट जो चौथा दिन है फिर भले धीरे धीरे आप शब्दों में आ सकते हैं, बोल में आ सकते हैं, लेकिन 3 दिन कल सवेरे से। अभी जो आए हैं, जिनको भी आपको घर में बोलना है कि आ गए हैं, जिनको जो भी बचा हुआ काम है, इनको ये बोलना है, वो बोलना है, सब कुछ जो कारोबार है आज रात को आपको पूरा कर लेना है, सोने से पहले आपसे बोलने का जो कारोबार है पूरा खत्म कर लीजिए, फिर कल सवेरे से आप सभी मुख का मौन, मन का मौन और मोबाइल का मौन, है ना। बहुत वो तो दूसरी बिल्ली तो फिर भगा देंगे, लेकिन कौन सी बिल्ली को भगाना मुश्किल है? कौन सी बिल्ली को भगाना मुश्किल है? मोबाइल का अटैचमेंट कितना हो गया है? अटैचमेंट नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, ये हमारा अंतिम पेपर है। बाबा ने क्वेश्चन पेपर भी आउट कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आउट करने के बाद भी हम कितना उसमें पास होंगे इससे हमें पता चलेगा कितना आप मोबाइल से मोह को तोड़ेंगे। मोबाइल आपके पास कब से आया है? कब से आया है आपके पास मोबाइल? कितने साल हो गए हैं? 5 साल, 8 साल, 10 साल? उसके पहले तो था ही नहीं, फिर भी कारोबार चल रहा था, फिर भी सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अभी ये मोबाइल आने के बाद इतना अटैचमेंट हो गया। भले इंसानों के साथ अटैचमेंट कम हो गया है, लेकिन मोबाइल एक घंटे के लिए कहीं रह गया ना, इतना दिल ऊपर नीचे हो जाता है, अरे मेरे मोबाइल नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अभी कल सवेरे, आज रात को जो स्विच ऑफ करेंगे 3 दिन के बाद ही स्विच ऑन करना है। ये चैलेंज आप सभी लेना, ये चैलेंज के रूप में लेना आप सभी, कि ठीक है ये चैलेंज के रूप में लेंगे। मैं अपने आप को चेक करूंगी कि कैसे कितना मैं मोबाइल से अटैचमेंट मेरा खत्म है, तो अपने आप को ये देखे और ये महसूस करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा। क्योंकि आने वाला कल क्या होगा पता नहीं ना, आप तो भाग्यशाली आ गए हैं, बार बार आते रहे ये हमारी इच्छा है, हर साल आते रहे, 6 महीने में के मैं एक बार आते रहे हम सभी की इच्छा है, लेकिन परिस्थितियां आने देंगी कि नहीं देंगी पता नहीं, भविष्य क्या होगा किसी को भी पता नहीं, लेकिन अभी आने का मौका मिल गया है, लेकिन इसका पूरा पूरा लाभ उठा ऐसे सोच करके, जैसे बाबा कहते थे ना, ये दिवाली अंतिम दिवाली समझो, ये आपका मधुबन विजिट अंतिम विजिट समझो आप। अगले बार आने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर आने को मिले तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आने को मिला तो क्या होगा। तो इतना भरपूर आत्मा को इतने शक्तिशाली करके जाए, ना केवल अपने लिए, लेकिन आगे चल करके सभी को मदद भी करना है ना। आधार मूरत उद्धार मूरत है हम सभी, ब्राह्मण आत्माएं संसार को सकाश देने वाली आधार मूरत है। अपने लिए, केवल अपने लिए शक्ति नहीं भरना है, लेकिन सभी को मदद करने के हिसाब से कितना भरने की जरूरत पड़ेगी, अपने परिवार वालों को, संसार को, सभी को मदद की जरूरत है। सभी तड़प रहे हैं, सभी दुखी हैं, तो हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, है ना। तो इसीलिए अपने लिए, सभी के लिए इतना अपने अंदर शक्ति भरे, बाबा का प्यार भरे, क्योंकि प्यार के बिना शक्ति नहीं मिलेगा। बाबा का प्यार इतना अंदर भरे कि कभी भी कोई परिस्थिति आए, कभी भी कोई समस्या आए, ये दिन याद आए। अनुभव, बाबा ने एक बार संदेश में बाबा ने ये कहा था, कभी भी कोई दिक्कत आती है ना, कोई भी समस्या आती है, वो बाबा के बच्चे क्यों दिल शिकस्त हो जाते हैं, क्यों मायूस हो जाते, क्यों दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं जो पहले जो अनुभव किए हुए हैं ना, बाबा ने जो प्यार का अनुभव कराया है भूल जाते हैं। ऐसे समय पर जब आप बहुत मायूस महसूस करते हैं, तो वो क्षण याद करना जो बाबा ने आपको इतना प्यार किया होगा। हर एक को अनुभव है बाबा का प्यार, हर एक को अनुभव है, तो हर एक को अनुभव है बाबा का प्यार, है ना। तो अभी इतना प्यार अपने अंदर भरे, इतना प्यार भरे, इतना अनुभव करे कि जैसे सूक्ष्म वतन में है ये अनुभव आगे के लिए आपको बहुत बहुत मदद होगी, है ना। तो इसीलिए केवल वर्तमान को नहीं देखना, भविष्य को देखते हुए वर्तमान में इतना शक्ति और प्यार भरने की जरूरत है। और हम सभी ये इस बात के लिए भी भाग्यशाली है कि मृत्युंजय भाई जी हमारे बीच में है। इतने व्यस्त होते हुए आप सभी से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे, शांतिवन से खास आप सबसे मिलने के लिए यहाँ पहुंचे। वैसे तो कल परसों उनको जाना है, भाई जी को भाई जी ने कहा कि नहीं आ जाऊंगा, आज आकर के आप सबसे मिल करके हमें जरूर प्रेरणाएं देंगे और भाई साहब का भी प्रेरणा हम सभी सुनेंगे जरूर। लेकिन ये लक्ष्य भी हम इतना मजबूत करें इस सेशन में कि आने वाले 3 दिन यादगार रहे, जीवन के लिए यादगार रहे। ऐसे भट्टी कभी फिर से मिले या ना मिले, लेकिन इस भट्टी में इतना तप करे, अपने को इतना जैसे पकाए, भट्टी किसको कहते हैं, ईंट को जहां पकाते हैं इतना मजबूत हो जाता है ईंट, ऐसे इस भट्टी में आत्मा को इतना मजबूत, इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग बनाए ताकि फिर हमेशा के लिए संगम युग के अंतिम समय तक वो चलता रहे। इसी शुभ का भावना शुभकामनाओं सहित सभी को पुनः इस भट्टी में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम
शुक्रिया सुमन बहन जी, आपने एक चैलेंज हम सबको दिया है। किस किस ने चैलेंज एक्सेप्ट किया? चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं ना, आइस बकेट चैलेंज कि चलो वो ठंडी बाल्टी से नहाना है, एकदम बर्फ वाला डालना है अपने ऊपर। लेकिन एक बहुत सुंदर पॉजिटिव चैलेंज, 3 दिन हम मोबाइल से मुक्त, तो बड़ा चैलेंज है। अपने आप से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा, आपकी अपनी उन्नति के लिए है। क्योंकि दीदी ने भी याद दिलाया और बहन जी ने भी, बाबा का ये महावाक्य ही है ज्ञान सरोवर के लिए कि साधारण स्थिति वाले आएंगे और इस ज्ञान सरोवर में आकर फरिश्ते स्थिति का अनुभव करके जाएंगे। तो ये भगवान का भी वरदान है, लेकिन इस वरदान को हम कितना अपने अंदर समाते हैं ये हमारे मन के मौन, मुख के मौन और मोबाइल के मौन पर ही निर्भर करता है। तो जरूर इस चैलेंज को पूरी दृढ़ता के साथ अपनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब अपनी शुभकामनाओं को लिए हुए हमारे बीच आ रही हैं टोंक से अपर्णा बहन जी, जिन्हें हम रानी बहन जी के नाम से भी जानते हैं, उनका वास्तविक नाम अपर्णा बहन जी है। तो रानी बहन जी पिछले 32 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पूरा परिवार ही बाबा के यज्ञ में अपनी सुंदर सेवाएं दे रहा है। आपकी बहन भी समर्पित असम में, आपके दोनों भाई, आपके एक भाई अभिमन्यु भाई ज्ञान सरोवर में ही समर्पित रूप से सेवाएं देते हैं। तो ऐसी हमारी प्यारी अपर्णा बहन जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी शुभकामनाएं इस भट्टी के लिए प्रदान करें।
ओम शांति। सबसे पहले तो हम बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। क्यों देंगे? देखो अभी जो भट्टी की लिस्ट बनी थी हमारे, उसमें कोई नाम नहीं था, कोई नाम नहीं था। आसाम के आने वाले थे, पता नहीं बाबा ने कैसे हमारी भाग्य की लकीर खोली और हमारी अचानक हमें एक लॉटरी दी। इतना सुंदर लॉटरी मिली जो हमारी शांतिवन में जून में थी तपस्या का प्रोग्राम, परंतु वो तो लॉकडाउन के कारण कैंसिल हो गया था। और हमारे जो भाई बहने थे सब तैयार बैठे थे, एक इशारा मिलते ही सब खड़े होने लगे, हम जाएंगे हम जाएंगे। और ये लॉटरी किसने दिया? बाबा ने। देखो पहला जो गंगा स्नान करने, और बाबा ने सबसे पहले हमें भाग्य दिया और उस भाग्य में सब भी बहुत चाहते हुए भी कैंसल हो गया, जो न चाहते हुए भी आगे पहुंच गए। तो ये किसकी? सबसे पहले इसीलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद है, और जो हमें इतना शुभ अवसर, इतनी सुंदर लॉटरी दी, और साथ साथ हमारी परम आदरणीय दीदी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, वो भी हमें आने की स्वीकृति दे दी। तो उनकी स्वीकृति से ही हम पहुंचे, तो उनको भी हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हम दीदी के लिए भी चाहते हैं दीदी हमेशा सदा स्वस्थ रहे, और हमारी इस यज्ञ को सदा निर्विघ्न चलाते हुए ऐसे भट्टियां कराए, और हमारी पालना करते रहे, और हमें बासमान बनाने की शिक्षाओं से भरपूर करते रहे। तो ऐसे दीदी को भी मेरा यही शुभ भावना है, सदा ही स्वस्थ और निर्विघ्न रहे। और हमारे सामने हमारा बड़ा भाई साहब और सुमन दीदी, वो भी देखिए हमारे लिए, हम जो भट्टी में पहुंचे हैं तो हमारे लिए वो कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं। तो उनके भी, उनके लिए भी दिल से धन्यवाद। और देखो भाई साहब भी हमारे, बड़े भाई साहब हमारे, हमसे मिलने के लिए अपना अमूल्य समय निकाल कर पहुंच गए, उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारी भी शुभ भावना है, भाई साहब भी यज्ञ में बहुत बड़ा उनका पार्ट है, बहुत बड़ा कार्य संभालते हैं, एजुकेशन उन पूरा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट संभालते हैं। और हमारा सुमन दीदी जो ज्ञान सरोवर में, और भाई साहब रुपेश भाई साहब, ये संजय भाई साहब और ज्ञान सरोवर निवासियों, उनके लिए भी हमारी यही शुभ भावना है, सब आत्माएं सब स्वस्थ और निर्विघ्न रहे, और हमारी ऐसी ही पालना करते रहे, और हम अपने को भरपूर करें, और साथ साथ हम जो भी आए भाई बहने, तो हम विशेष लक्ष्य लेकर अपने कर्म धंधा से ही छुट्टी लेकर बाबा के घर में आए हैं। सिर्फ यहाँ थोड़ी घूमने के लिए आए क्या हम? तब ये ज्वालामुखी योग तपस्या भट्टी में अपने को बाप समान, जगती ज्योति, ये संडे की मुरलियों बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाप की आशाएं, हम सब क्या बने? जगती ज्योति बनकर आत्मा की ज्योति जगाते हुए ऐसे तपस्या करें। ये देखो ज्ञान सरोवर का कितना सुंदर वातावरण, शांत परिवेश, सुंदर वातावरण, और देखो कहीं कुछ है बार, शांतिवन में तो क्या करते थे भाई, उन बाहर भी निकल जाते थे, यहाँ बाबा ने सबसे मुक्त, और हम भालू पकड़ेगा, इसीलिए वहां कितने भी रोको कोई नहीं, कोई निकल तो जाते ही थे। तो देखो यहाँ सबसे हमारी मन बुद्धि को समेट कर हम आए हैं जिस लक्ष्य से, और बाबा ने इतना सुंदर लॉटरी दी है, सुंदर चांस दिया है, तो हम सब इस लक्ष्य से जो आए हैं, ये भट्टी को एक जीवन की यादगार बनाए, हमारे जीवन की एक यादगार बन जाए। जैसे सुमन दीदी ने बताया, पता नहीं आगे चाहते हुए भी हम आ पाए या ना पाए, या अपना कर्म धंधा ऐसे कौन सी रोक ले, या हमें समय परिस्थिति हमें ऐसे कुछ ऐसा बना दे जो हम आ भी ना सके, हो सकता है ये अंतिम सा हमारी तपस्या की भट्टी हो। इसीलिए इसको, इस भट्टी को हम सब इतनी ही यादगार जीवन की भट्टी बनाए, और यहाँ एक तपस्या, एक ज्वाला स्वरूप आत्मा को एकदम पावरफुल बनाकर यहाँ से निकल के जाए, और यही तपस्या ही हमारी क्या होगा, अंत समय, अब सब देख रहे दुनिया की परिस्थिति, सब घर ग्रस्त में रहते पर दुनिया के समाज में रह रहे, देख रहे दुनिया की परिस्थिति क्या है, तो परिस्थिति देख रहे और आगे भी ये समस्या कोई हल होने वाला नहीं और आगे बढ़ेगा। इसीलिए इस अंतिम पुरुषार्थ की समय समझकर हम इस अंतिम घड़ी को पूरा पूरा सफल करें और अपना जीवन के यादगार बनाकर ले जाए और उस अंतिम परिस्थिति दुनिया में रहते भी इस भट्टी की जो यादगार हमें स्मृति में आया और वही हमें निर्विघ्न बनाए और हम सब निर्विघ्न बनकर बाबा का नाम रोशन करें, बाबा को प्रत्यक्ष करें, यही हम अब हमारी शुभ भावना है। तो हम सब यही शुभ भावना को पालन करेंगे ना, तो जरूर करना है। तो यही कहते हुए ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आपने अपनी शुभ प्रेरणाएं न केवल हमारे भट्टी में आए हुए भाई बहनों को दिया, लेकिन हम सभी को भी, ज्ञान सरोवर निवासियों को, मंचस्थ हमारे वरिष्ठों को, और सचमुच शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं इन्हीं की जो लेन देन है हमारे परिवार की सुंदर शोभा है। हाँ, गहन तपस्या करते हुए हम जरूर विश्व के भी आधार मूर्त बने और सारे विश्व तक एक सुंदर लाइट माइट पहुंचाएं। शांतिवन की बात कर रहे थे बहन जी कि वहां बाहर निकलने का चांस होता है, लेकिन यहां बाहर निकलेंगे तो भाई साहब याद दिला रहे थे कि यहां भालू पकड़ लेंगे, इसीलिए यहां गेट से बाहर नहीं निकलना है किसी को, हमें बाबा से मिलन करना है, भालू से नहीं, राइट। अंतर्मुखता की गुफा। तो अब मैं अनुरोध करूंगा, सचमुच हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, मुझे कई बार बहुत दिल में आता है, आप सब भी महसूस करते होंगे, हमारे बड़े इतने व्यस्त रहते हैं सेवाओं में, लेकिन फिर भी हम सबसे इतना प्यार है, हम सबकी इतनी केयर करते हैं कि हम आगे बढ़ें, उन्नति करें, स्वस्थ रहें, बाबा की याद में मस्त रहें। इसके लिए अपनी जो पर्सनल जो भी अपने कार्य हैं उनसे भी, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वक्त निकाल कर हमारे पास आते हैं, और साथ ही हम सबको अपने आशीष से, अपने शुभकामनाओं से भरपूर करते हैं। आदरणीय भ्राता जी भी इतने दूर शांतिवन से हमारे बीच खास हमसे मिलने के लिए आए हैं, तो बहुत बहुत भाग्यशाली है ना, बहुत बहुत भाग्यशाली है ना, तो जोरदार तालियों से भ्राता जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे पुनः। और हम जानते हैं कि भ्राता जी ब्रह्मा कुमारी इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन विंग के आप चेयरपर्सन हैं, विद्यालय की जो आज हम सेवाएं देख रहे हैं उन्हें इस बुलंदी तक पहुंचाने में, एक नया आयाम देने में भ्राता जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भी कॉन्फ्रेंसेस देश में हो, विदेश में हो, हेडक्वार्टर्स में हो, अलग अलग स्थानों पर हो, भ्राता जी ने कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से जो VVIPs हैं, जिनके लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि माइक तैयार करो, VIPs को लाओ, तो भ्राता जी इसके लिए विशेष निमित्त बने कि सारे VIPs को यज्ञ से जोड़ा और आज यज्ञ इस स्वरूप में है। तो ऐसी महान विभूति जो यज्ञ की शोभा है, आधार मूर्त है और हम सबके दिल अजीज हैं, ऐसे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से अनुरोध करूंगा कि भट्टी के लिए अपनी प्रेरणाएं हम सबको प्रदान करें। भ्राता जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम बाप दादा को हम सभी मिलकर के मन से आह्वान करते हैं, मन से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं, क्योंकि जितना भी बाबा ने रचना रची है और अभी भी संगम युग में अल्प समय बचा हुआ उस समय का भी वरदान दिया है, इसके लिए बाप दादा को धन्यवाद करते हैं। साथ साथ में ज्ञान सरोवर के परिसर को और यज्ञ में जितना भी सेवा केंद्र है, चाहे मधुबन है, शांतिवन है, ग्लोबल हॉस्पिटल है, अबू रोड है और भी आसपास में, इन सभी केंद्रों को सुचारू रूप में संचालन में मदद करती है हमारा आदरणीय दीदी निर्मला बहन, डॉक्टर निर्मला बहन। इनको ऑस्ट्रेलिया का कितने कंट्रियों का सेवा करके उन्होंने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स और अनेक हजारों भाई बहनों को समर्पित करके भी सेवा किया। आखिर प्रवेश मधुबन में आकर ज्ञान सरोवर संभाल रहे, इसको भी अपने दिल से बधाई देते हैं, शुक्रिया करते। और हमारा सुमन बहन, आप सबको मालूम है सुमन बहन तो चिर परिचित है आप सबको, और इन्होंने यंग एज में करीब 5-6 साल थे तब से इन्होंने ज्ञान में आ गए, बाद में इंजीनियरिंग पूरा किया, बाद में ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये भी एक स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग है, परंतु ये सबसे बड़ा अदृश्य इंजीनियर है। इसको इसी बातों को समझकर जानकर पहचानकर और बाबा का गोद में आए, उसको भी धन्यवाद। हमारा रूपेश भाई हर दिन हर घर घर में घुस जाता है, ऐसे घुसता है बताइए, टेलीविजन के माध्यम द्वारा। देखो भगवान सर्वव्यापी नहीं, हमारा रूपेश भाई सर्वव्यापी है, बहुत अच्छा कार्यक्रम करता है, बहुत सुंदर। और साथ साथ में हमारा संजय भाई यहाँ स्पार्क के लिए कोऑर्डिनेटर भी है, और स्पार्क के नाम से सारी देशों में विदेशों में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम, आजकल तो व्यक्तिगत मिलने का नहीं है, ऑनलाइन प्रोग्राम रच करके बड़े बड़े लोगों को बुला करके। और आप सभी, मुझे बहुत खुशी हुई है कितने दूर से आसाम से दिल्ली अनेक अनेक प्रांतों से जो आए, राजधानी राजस्थान टोंक से भी आए हैं, टोंक से ना बहन। और आप सबको अपनी तरफ से, दादियों की तरफ से, बाबा की तरफ से बहुत 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 बधाई देता हूँ, बधाई देता हूँ, बधाई देता हूँ। हम सभी जब से ज्ञान प्राप्त हुआ तब से लेकर के हमारा लक्ष्य फिक्स हो गया, क्या बनना है, हम क्या क्या बनना है, थोड़ा जोर से, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। ये तो एक बाबा ने ये एक ऑब्जेक्ट हमारा सामने रखा, और साथ साथ में संगम युग में क्या बनना है, फरिश्ता बनना संगम, वो भी लक्ष्य रखा। उसी लक्ष्य को भी और भी हाईलाइट करके बाबा ने कहा बाप समान बनना। सर्वप्रथम बाबा ने इस भट्टी का, हर भट्टी का हम लोग यही सोचते हैं, यही लक्ष्य मिलता है हमको, बाप समान बनना, फरिश्ता बनना, उड़ती कला सीखना, और चढ़ती कला का समय पूरा हो गया, अभी एक संकल्प किया तो उड़ती कला का अनुभव, संकल्प किया तो सिद्धि स्वरूप का अनुभव, संकल्प किया था नया रचना का अनुभव, संकल्प किया तो बहुत चीजें अनुभव में लाना। ऐसी चीज को अनुभव करने के लिए बाप दादा ने समय प्रति समय हम सबको भट्टी रखते हैं, परंतु पता है क्यों इसके लिए भट्टी रखा, भट्टी का बहुत मीनिंग है, ईंट का भी भट्टी होता है, सोने को गलाने के लिए भी भट्टी होता है, आभरण बनाने के लिए, और भट्टा बनाते हैं दूसरे के लिए, वो अलग है, उसके अर्थ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और कई किसी को बोलते हैं इसका भट्टा बैठ गया, मैंने पीछे चले गए, वो भी उसका भी, परंतु बाबा ने हम सबको क्या क्या भट्टी में उड़ती कला का अनुभव, अभी ज्ञान सरोवर में आए, सिर्फ इसका नाम ज्ञान सरोवर भी नहीं है, और भी है, क्यों, वो तो अव्यक्त है, ज्ञान सरोवर व्यक्त है, और अव्यक्त क्या है, शांति सरोवर, इधर आते ही शांति का अनुभव होता है, होता ही नहीं होता है। मुझे याद है पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रह चुके, अभी तो गुजर गए, वो हर बार हर साल में कम से कम 1 टाइम इधर आते थे, उन्होंने कहा इधर बैठ भी जाए ना, इधर घूम भी जाओ कहीं भी, और हमको शांति का अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है, सच्चाई का अनुभव होता है, स्वच्छता का अनुभव होता है, पवित्रता का अनुभव होता है। इसके लिए उनकी उनकी डिक्शनरी में शब्द बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्द, वो कहते थे इधर कुछ भी नहीं करो, अपने आप इधर पैदा करो और यहाँ की मौन भाषा को सीखो और आपको चार्ज हो जाए। कोई गाड़ी में बैटरी चार्ज होता था, बैटरी को स्टेशन पर रहता है, वह गैस कम हो जाता है, उसको तय कर स्टेशन में गैस भरते हैं, इसकी डीजल जो भी है पेट्रोल, इसके लिए इधर आने से भी हमारा भरपूर होता है, ऐसा उनकी जीवन में अनुभव को बहुत बार इन्होंने शेयर करते थे, इसके लिए वो अलग है। हम तो इधर ही रहते हैं, और आप सभी भी आए हुए हैं, आप सबको भी मालूम है बाप दादा से मिलने का और अनेक प्रकार के अनुभव करने का। इसके लिए आप बहुत बहुत लकी है। अभी हरिद्वार की बात कह रहे थे, हरिद्वार में प्रथम स्थान किसका होता है? संतों का होता है। आप सभी संत हैं, संत हैं, और संत मनाना सभी त्याग किया है, वैराग किया है और उनको सदा दूसरों के कल्याण करने के लिए सोचता है, पावन बनाने के लिए सोचता है। इसके लिए और संतों को पहले गंगा में व हरिद्वार में जहां भी कुंभ मेला होता है संतों का जट इनका पूरा जाकर के पहले उधर पांव रखता है, स्नान करता है और उसमें बहुत विधि पूर्वक करते हैं। इसके लिए आप लोग भी ऐसी कोरोना के पीरियड में प्रथम ग्रुप इधर आए तो बहुत खुशी की बात है। मैं फिर भी आप सबको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन कर, क्यों अभी भी थोड़ा डर है लोगों में, अभी भी बाहर जाने के लिए डर है, यात्रा करने के लिए डर है, ट्रेन में जाना भी मुश्किल डर है, फ्लाइट में जाना वो भी मुश्किल है, और अधिकांश लोग तो अपनी अपनी वाहनों से थोड़ा थोड़ा लोग आ रहे हैं, परंतु ऐसा डरने की कोई बात नहीं। मैं कहने की भाव ये है, हमारा लक्ष्य को पक्का करना, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण होना चाहिए, जैसा सोच वैसे स्वरूप होना चाहिए, जैसे संकल्प वैसे प्राप्ति होना चाहिए, तब तो हम फरिश्ता बने, तब तो हम देवता। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को पांच स्वरूपों का याद दिलाया ना, पांच स्वरूप याद रहता है, किस किस को याद रहता है बताए? सदा याद रहता है, कभी कभी याद रहता है? हमारा यात्रा है, हमारा जीवन एक यात्रा, जीवन एक चैलेंज है, जीवन एक चुनौती है। इस चैलेंज को, चुनौतियों को हमने स्वीकार कर दिया, उसको एक्सीलेंस में परिवर्तन कर दिया तो क्या होगा? वाह 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 वाह। इसके लिए हमको बाबा ने आते ही हमको ये अनुभव कराया और ये लक्ष्य दिया, हमारा सभी साहित्यों में समाया हुआ, बाबा का मुरली में है और पिक्चरों में भी है और हमारा जीवन के पिक्चर में भी है। इसके लिए लक्ष्य तो सबसे पहले हम लोगों को अनादि स्वरूपों को याद है। हम सभी कौन है? आत्मा है। सिर्फ आत्मा ही नहीं, आत्मा तो सारी दुनिया में, हम तो एक ज्योति स्वरूप आत्मा है। हम सिर्फ ज्योति स्वरूप आत्मा ही नहीं, हम बाप का बेटा बेटी है, बच्चे। संसार में कितने भी शाहकार हो, संत हो, पढ़े लिखे हो, धनवान हो, गरीब हो, हम परमात्मा के संतान केवल मुख में बोलते हैं, उनको परमात्मा को याद करने के लिए कहेंगे तो गणपति को, हनुमान को आदि आदि के पर चले जाते हैं। हम सच्चा बाबा का याद करते हैं, सच्ची संबंध है और अनुभव है। इसके लिए बाबा हम बच्चों को सपले हमारा अनादि स्वरूपों को याद किया, जो परंधाम में जब थे, निर्वाण धाम में थे, और ऐसी निर्वाण धाम में कोई समस्या नहीं था, विघ्न नहीं था, कोई चैलेंज नहीं था, किसी का ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं था, उधर मौन भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली शांति है। इसके लिए उस धाम को निवासी है, हम सबको मालूम है, अनेक धाम बना हुआ, संतों की धाम अनेक बनाया, परंतु शांति धाम का अनुभव कोई संतों को भी मालूम है, बड़े बड़े इंजीनियर्स को मालूम है, विज्ञानियों को मालूम है, और इन्होंने आसमान में भी सैटेलाइट लगा दिया, सैटेलाइट के माध्यम सारी दुनिया देखता है, परंतु उस सैटेलाइट के द्वारा परंधाम नहीं दिखता है, बाबा नहीं दिखता है, प्राप्ति नहीं दिखता है और भय दिखता है। आज के दिन में सैटेलाइट है माना किसी का नाश करने के लिए, किसी के ऊपर बम डालने के लिए, किसी देश का नक्शा बिठाने के लिए और साथ साथ में किसी शत्रु को नाश करने के लिए, वो हमारा सैटेलाइट है। और सैटेलाइट में भी क्या है, और तो न्यूक्लियर पावर्स है। सैटेलाइट के माध्यम द्वारा मिसाइल भेजते हैं, टारगेट रखते हैं, जहां करना उसी स्थान पर ही, उसी घर में, समझो 100 घर के बीच में एक घर है, उधर ही मारना है, सैटेलाइट के माध्यम द्वारा फोकस करके वो मारते हैं। माने इतनी फोकस है, इतने विज्ञान हम सबको ताकत दिया, परंतु विज्ञान परंधाम को दर्शाया नहीं, परंधाम को जाने के लक्ष्य भी नहीं दिया। बाबा ने हम बच्चों को बैठे 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 अब परंधाम की यात्रा कर सकते ना, अपना घर है, अपना घर में बाप दादा भी है और साथ ही परिवार है, विश्व परिवार है, इतनी आत्मा है, अभी तो वो आत्मा उधर भी काली हो गया। इसके लिए हमको परंधाम को याद करने का सच्ची योग वही है, अपने घर याद नहीं आता है, अपना स्वरूप याद नहीं है, वो अपना शक्ति याद नहीं है, अपना गुण याद नहीं है, तो वो योग नहीं है, वियोगी है। परंतु इसके लिए बाबा ने सर्वप्रथम हम सबको अपना घर याद किया, क्यों? इससे मोह भी छूट जाएगा, माया भी छूट जाएगा और ठगापार भी छूट जाएगा, वेस्ट भी छूट जाएगा। सभी वेस्ट उधर नहीं चल सकता है। चल सकते हैं नहीं। पवित्र आत्मा को ले जाने के लिए बाबा आया, परंतु पवित्र आत्मा को भी ले जाएगा उधर जाकर के गड़बड़ नहीं कर सकते। इधर आते हुए गड़बड़ शुरू कर देते हैं। आजकल गड़बड़ का दुनिया सब जगह, घरों में गड़बड़ है, मन में गड़बड़ है, परिवार में गड़बड़ है, रास्ते में गड़बड़ है, सब जहां जाओ ये बाजार है, बाजार में सब दिखता है। इसके लिए बाबा ने हम सबको परंधाम की यात्रा करने का मन मना भव मंत्र के माध्यम द्वारा सीखा है। दूसरा उसके बाद में बाबा ने कहा, वो हम सबको अनुभव है, ब्रह्मा बाबा जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते थे हिस्ट्री हॉल में, अधिकांश बाबा ने हिस्ट्री हॉल में सारी मुरली चलाए। अभी रिवाइज कोर्स में बहुत बहुत स्थानों में हो रहा है, मधुबन में भी हो रहा है, ओम शांति भवन भी हुआ, ज्ञान सरोवर हुआ और शांति वन में हुआ और सारा दुनिया। परंतु बाबा ने सारे सृष्टि का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान जो है आदि मध्य अंत का कहां रिवील किया था? पांडव भवन की हिस्ट्री हॉल में, छोटा सा हिस्ट्री हॉल है, उस हिस्ट्री हॉल में बाबा ने जो सुनाया सारी इस संगम युग में जो होने वाला विकास होने वाला, आगे आने वाले भाई बहनों का, आगे आने वाले इसका स्वरूप का सारा बाबा ने शिक्षा के माध्यम द्वारा, वाणी के माध्यम द्वारा, वरदान के माध्यम द्वारा, आवाहन के माध्यम द्वारा बाबा ने दे दिया था। इसके लिए जो मधुबन का जो हिस्ट्री हॉल है बहुत महत्वपूर्ण है। और बाबा एक छोटा सा कुटीर में रहा, हम लोग तो बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, बड़े बड़े रूम में रहते हैं, परंतु बाबा अंतिम तक बाबा ने कुटीर में रहा। इसके बहुत बड़ी कहानी है, परंतु बाबा ने ऐसी कुटीर में रह करके सारे विश्व का, इतने पंडितों को नहीं मिला, संतों को नहीं मिला, साधुओं को नहीं मिला, तपस्वियों को नहीं मिला, विज्ञानियों को नहीं मिला, बाबा ने ऐसी ज्ञान बच्चों को दिया। इसके लिए उसमें भी ब्रह्मा बाबा जब मुरली चलता था उधर आप सभी देखा होगा लक्ष्मी नारायण का फोटो है, चित्र ट्रांसलेट है, कहा था मैं ऐसा विष्णु बनेंगे, मैं ऐसा नारायण बनेंगे, ऐसा बाबा खुद भी उसके टाइम में अनुभव होता था। बाबा खुद उस टाइम में नारायण है, खुद उसी टाइम में कृष्ण है, खुद उस टाइम में ब्रह्म है, खुद उसी टाइम में एक छोटा सा लाइट है। ये अनुभव हर व्यक्ति जिन्होंने मिला उन सबका अनुभव है। इसके लिए हमको बाबा ने आदि रत्नों के, आदि रत्न में से संगम की बात नहीं कर रहा हूँ, सती से लेकर के हम कैसे थे, देवी देवता थे, हम तो इस रूप में नहीं थे, देवी देवता थे, ऐसी देवता संपन्न संपूर्ण पवित्रता और सब प्रकार की प्राप्तियां, तन में भी कोई बीमार नहीं, आजकल तो घर घर में बीमार है और गली में बीमार है, इस बीमारी से बचने के लिए हम सब वो मुंह जैन ही बनना पड़ता है, जैन लोग तो मुंह बंद करके चलने के लिए बोलते हैं। ऐ तो बाबा ने हमको मौन की भाषा सिखाया, परंतु फिर भी इस दुनिया के प्रोटोकॉल को और इस बीमारी से बचने के लिए, और मेरे इतिहास में कभी देखा नहीं है इतनी सारे विश्व में ऐसी बीमारी फैल सकते हैं, इसके लिए ऐसी समय पर बाबा ने बच्चों को एक अपनी गोद में बिठा करके रखा है, सेफ्टी में रखा है, खुशी में रखा है, आनंद में रखा है, तपस्या करने के लिए कहा, और इसके लिए अकेले भी रहो परंतु बाबा हमारा साथ है, दूसरा संबंध वगैरह छोड़ दो परंतु एक बाबा दूसरा ना कोई, इस अनुभव कराते हुए हमारा देवत्व स्वरूप का अनुभव कराया। इसके लिए बाबा ने हमारा सेकंड स्टेज में वो भी अनुभव कर दिया। उसके बाद में सत्य तेता के बाद में आप सबको ज्ञान तो आई है, आपको क्या बनाया, पूज्यनीय बनाया, पूज्य बनाया, क्योंकि संगम युग में बना दिया था, पूज्य बनाया, उसी कारण आज के दिन में भी किसी को भी कहा जाता है, कोई कष्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई चैलेंज होता है, कोई बीमार होता है, बीमार होता है तो किसके पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। मंदिर में कौन है, हम लोग ही है, हमारा मूर्ति है। अभी हमारा मूर्ति उनको खुशी दे सकता है, हमारा मूर्ति उनको नवा चेतन दे सकता है, मूर्ति उनको सफलता दिला सकता है, मूर्ति उनकी संकल्पों का सिद्धि स्वरूप का वरदान दे सकता है। आप नहीं कर सकते, अभी कर सकते हैं, परंतु वो स्थिति हमारा स्वरूप का अनुभव होना चाहिए, वह याद रहना चाहिए, उसका याद का स्वरूप होना चाहिए। इसके लिए तो देश के किधर भी कोने में जाओ मंदिर उनकी भरपूर है ना, दुनिया के धरती पर बहुत भरपूर है। इसमें हमारा ही मूर्ति, हमारा बहनों का मूर्ति, अपना साधना की मूर्ति, अपना सिद्धि की मूर्ति, अपनी सेवा की मूर्ति, अपनी सफलता की मूर्ति, ये पूज्य है। ऐसी पवित्र आत्मा होने के कारण उनका पूज्य बना। मुझे एक छोटा सा अनुभव, एक बात बताता हूँ। एक सेंटर की बहन है, हमारा बड़ी बहन है, सभी बहनें, एक बार दादी के पास आए, दादी प्रकाशमणि जी, उनके सामने एक नक्शा रखा, बिल्डिंग का नक्शा। दादी आप इसको आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग दो, ये जल्दी बिल्डिंग बन जाए। दादी तो बहुत प्यार से देखी, सब कुछ देखा, ये कितना एरिया देखा, क्या ड्राइंग बना, सब कुछ देख करके, बाद में उसको देखा, उसको देख करके, दृष्टि दे करके, ऐसा करो आप देवी बन जाओ, बिल्डिंग अपने आप बन जाएगा। उनके बस क्यों, मंदिर हम खुद बैठ करके अपना मंदिर नहीं बनाते, बनाते हैं हमारा भक्त लोग मंदिर बनाता है, अपनी सेवा करने वाले मंदिर बनाते हैं, बहुत लोग मंदिर बनाते हैं, परंतु मंदिर में रहने लायक बन जाओ तो अपने आप ये बिल्डिंग बन जाएगा। वो बहन जी बहुत तपस्या किया, बाबा ने कहा व दादी ने कहा, दादी का बोल में ताकत है, पावर होता थी, और एक साल के अंदर बढ़िया फर्स्ट क्लास सेंटर हो गया, और उनको एक रुपए का भी तकलीफ नहीं हुआ, चिंता नहीं हुआ, और भय नहीं हुआ अभी कैसे होगा, किससे पूछो, क्या इसके लिए चंदा वसूल करने के लिए, माना बाबा ने उनको ऐसी कराया उनकी तपस्या के कारण। आज भी माउंट आबू में कैसे चलते है? लोग दुनिया भर के लोग पूछते हैं ब्रह्म कुमार इसका पैसा कहाँ आता है, ब्रह्म कुमार इसको कहाँ से आता है, कुछ तो देना नहीं उनको, परंतु इसका सोर्स हम कहते हैं हमारा मौन ले आता है, हमारा शांति लेके आता है, हमारा प्रेम लेके आता है, हमारा सद्भावना लेके आता है, ये सभी ऑटोमेटिकली जितना भी हमारा कार्यक्रम बनाते हैं उसका संपन्न कराते हैं। आज के समय में भी आपके मंदिरों में कितनी प्रकार की पूजा होते हैं, बहुत वेराइटी पूजा है। इसके लिए हम सबको सुबह उठते ही हमको ऐसी संकल्प रचना चाहिए, पाप समान संकल्प रचेंगे, उसका स्वरूप ऑटोमेटिकली सारा दिन जीवन में याद रहेगा, और सारा दिन ऑटोमेटिकली उसके अनुभव के आधार से और भी शक्तिशाली संकल्प कर सकते, क्योंकि ब्राह्मणों का ताकत क्या है, ब्राह्मणों का खजाना क्या, ब्राह्मणों का सिद्धि क्या, संकल्प, क्योंकि संकल्प ऐसा शक्ति है, दूर दूर रहने वालों को भी सेवा कर सकता है, दूर रहने वालों को अनुभव करा सकता है, सम्मुख में आने वालों को तो डेफिनेटली उसको इम्पैक्ट कर सकता है। इसके लिए संकल्पों का धनी, संकल्पों का सिद्धि स्वरूप, क्योंकि ये सारी सिद्धि व धनी बाबा ने बना के रखा है। इसके लिए योग जो है, तपस्या जो है, वो इम्पोर्टेंट है। जितना आप योग करेंगे ऑटोमेटिकली ये सारा स्वरूपों को अनुभव में ला सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो याद आता है तो उसका याददाश्त पावर ऑटोमेटिकली पावर जनरेट करता है, संकल्प एक तरफ पावर जनरेट करता है। इसके लिए हमारा भक्ति मार्ग का भी रूप किसका है, हमारा है, और कितने लोगों को प्रेरणा दिया, आज दिन तक भी देते हैं, आज दिन तक भी कहीं भी मंदिरों में जाओ, विशेष करके तिरुपति में जाओ, उसका दर्शन एक मिनट के लिए, कितने दूर दूर से आते, कितने वेट करते हैं, परंतु उनको बाहर आते हुए एक मिनट के अंदर में उनके अंदर इतना खुशी होता है। मैं कहीं भी मंदिर हो, मेरा भाव ये है, इसके लिए बाबा ने मूर्ति, आप तो देवता मूर्ति बन जाओ, शरीर अलग है परंतु आत्मा तो देवता थे, देवता है, देवता बनेगा। और साथ साथ में बाबा ने यह भी दिला, आज संघ में हम सबको बाबा ने पढ़ाई करा, खुद ही भगवान आकर के किसी को भी नहीं पढ़ाता है, ब्राह्मणों को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है। इसके लिए हम कितने सालों से पढ़ा, 85 ईयर्स से निरंतर बाप दादा ने मुरली सुनाया, चाहे रिवाइज मुरली, री रियलाइज मुरली, और जो भी मुरली बाबा ने दिया था हिस्ट्री हॉल में, उन दिनों में हम सभी नहीं थे, और उस समय में बाबा ने मुरली चलाया, आज सारी दुनिया में वही मुरली चलता है ना। ठीक है, गुजर दादी के तन में बाबा ने करीब 50 साल तक हम सबको पालना दिया, शक्ति दिया, वरदान दिया, उसका अनुरूप जीवन बनाने के लिए प्रेरणा दिया, बहुत कुछ दिया बाबा ने। अभी बाप दादा भी ऊपर है, गुजर दादी भी ऊपर है, अभी उनका ऑफिस माउंट आबू से शिफ्ट होकर के सूक्ष्मवतन हो गया, अभी सूक्ष्मवतन उनका ऑफिस हो गया। अभी तो बाबा कहते हैं मेरे पास आओ, इधर तो बैठने के लिए कम हो सकता है, जगह के लिए कम हो सकता है, दुनिया के कई कानून है, बीमारी का लक्षण है, कुछ भी हो सकता है, परंतु सूक्ष्मतन भी कुछ नहीं हो सकता है ना। उधर कोरोना आ नहीं सकता है, दूसरे लोग चल नहीं सकता है, परंतु हमको संकल्प के माध्यम द्वारा उसका स्वरूप का अनुभव करेंगे, अब तो ऑटोमेटिकली अशरीरी बन का अनुभव। देहाभिमान क्या चीज है वो भूल जाएगा, अपने अस्तित्व क्या है, अपना पावर क्या, अपना संकल्प क्या, अपना शक्ति क्या, वो सारे ऑटोमेटिकली अनुभव होगा। इसके लिए कोई भी बीमारी टच नहीं कर सकता है, टच भी करे तो हिसाब किताब है, कोई ना कोई हिसाब किताब है। हमको ज्ञान से जीत नहीं पाया, योग से जीत नहीं पाया, थोड़ा बहुत हो सकता है उसको कम करने व उसका एलिमिनेट करने के लिए कुछ अनुभव हो सकता है, परंतु हमारा वो स्वरूप संगम के इतिहास को याद करो, कैसे एक एक आत्मा उस समय में बाबा की गोद में आए, समर्पित किए, और उन्होंने सारे विश्व में अब ईश्वरीय शक्ति का, ईश्वरीय सम्राट का, ईश्वरीय दुनिया को बनाया ना। इसके भले हम इतनी भारी जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत नहीं है। इसके लिए बाबा ने बच्चों को सेलेक्ट करके ऐसा अनुभव कराया, और संगम में और एक अनुभव कराया, और एक लक्ष्य दिया हमको, क्या करना, फरिश्ता बने। कलयुग की तो बातें कहो, कलयुग के अंतिम में तो आप सभी देखते हैं, ध्यानते हैं, परंतु बाबा ने हम सबको लक्ष्य दिया फरिश्ता बनने के लिए। हम उड़ते भी फरिश्ता, चलते फरिश्ता, खाना खाने के टाइम फरिश्ता, किसी के साथ बात करते फरिश्ता, और इस दुनिया को अपनी नजर से निहाल करने का भी। बाबा कहते दृष्टि से सृष्टि, संकल्पों से सृष्टि, भावना के आधार सृष्टि, और ऐसी सृष्टि रचने का विधि बाप दादा खुद भी अनुभव कराया, और अभी ब्राह्मणों से वो एक्सपेक्ट करता है। हम सभी ऐसी सेवादारी बने तो विश्व सेवादारी, बाबा ने पहले टाइटल दिया है ना हम सबको, केवल अपने को सेवादारी नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने गली मोहल्ले का नहीं, विश्व सेवादारी। हर ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने ये टाइटल दिया, विश्व सेवाधारी। आप सभी ऐसे अनुभव करते हैं ना, विश्व सेवा के लिए विश्व को घूमने की जरूरत नहीं, आपका दिमाग में इतना पावर होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, माइट होना चाहिए, और साथ साथ में बाबा का कंबाइंड स्वरूप होना चाहिए, साथी। हम सब कहते हैं बाबा हमारा साथी है, और सारी दुनिया को साक्षी होकर के देखना। इस समय में दुनिया की तरफ लालच से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, द्वेष से नहीं, नफरत से नहीं, और प्राप्ति के हिसाब से नहीं, आप तो इस समय में सृष्टि को साक्षी होकर के देखो ड्रामा क्या हो रहा है। बाबा ने जो हिस्ट्री हॉल में बनाया था, सुनाया था मुरली, उसका जो एक एक शब्द का पिक्चर दिखाई देता है दुनिया के हालत को देखते हैं, तो इसके लिए बाप दादा ने उस समय में सारी दुनिया का अंत क्या हो सकता है, उसके क्या रूप हो सकता है, क्या क्या परिस्थिति आ सकता है, वो सभी बाबा ने कहा था, वो सब आजकल दिखाई दे रहे हैं। आजकल हर दिन मुरली सुनो, दुनिया को देखो, बाबा ने जो कहा था वो सिद्धि हो रहा है। इसके लिए समय बहुत समीप आ गया, समय बहुत कम है, इसके लिए किस घड़ी में कुछ भी हो सकता है। अचानक बाबा ने ये भी शब्द यूज किया बहुत बार अव्यक्त मुरली में, अचानक अचानक मौत कोई को पूछ के नहीं आता, घंटी बजा के नहीं आता, और उसको बोल करके प्रोग्राम दे करके नहीं आता है। मौत हर दिन में मौत हो रहा है, क्यों मौत हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, मनुष्य आत्मा अपने कर्मों से, अपने पापों से, अपने अज्ञान से, अपनी लालच से, अपनी इच्छा से जो पतित बनी है, और उसका परिणाम स्वरूप उनको भोग भोगना। इसके लिए सारी दुनिया को हॉस्पिटल बनाओ, ये बीमारी मिटना मुश्किल है। सारी दुनिया के लोगों को दवाई दो, नहीं आप दुआ दवा दोनों इम्पोर्टेंट, आपके दुआ जो सबसे बड़ा काम करता है, और उसके निमित्त मात्र थोड़ा दवाई लेंगे, परंतु दुआ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट। इसके लिए आपको वो दुआ बाबा ने दिया हुआ, वो खजाना आप बाबा ने दिया हुआ, बाबा ने ये वरदान हमको दिया बाबा ने, इसके लिए ऐसी अनुभव कराने के लिए ये बट्टी बहुत जरूरी है, बहुत बट्टी जरूरी है। और मुझे बहुत खुशी आप इस बट्टी में अपने आप चांस लिया। बाबा कहते जो चांस लेता है वो चांसलर बन जाता है, आगे बढ़ता है, चांसलर बना एक्सीलेंसी, अर्थात उनके प्रवीणता बनेगा और उसका सिद्धि स्वरूप ऑटोमेटिकली बनेगा। इसके लिए एक एक आत्मा सिद्धि स्वरूप अनुभव करे, एक एक आत्मा मर्सीफुल बने, क्योंकि इस दुनिया में अभी दुख कितने हैं, इसको सिर्फ दवाई नहीं से पूरा नहीं हो सकता है। ईच वन हैज टू बिकम मर्सीफुल, जैसे बाप को मर्सीफुल फादर कहते हैं, मर्सीफुल टीचर कहते हैं, मर्सीफुल सदगुरु कहते हैं, ऐसे उसका बाप समान बन करके, ऐसे मर्सीफुल बन करके दुनिया को कुछ भी नहीं दो, आपका दृष्टि दो, आपके संकल्पों का वरदान दो, अच्छी भावना रखो, वो भावना ऑटोमेटिकली आगे बढ़ाता है, भावना उनको श्रेष्ठ कार्य कराते हैं, उसमें त्याग भी इजी हो जाएगा, तपस्या भी इजी हो। जब त्याग कर दिया, वैराग्य आ गया, तो तपस्या, आप उड़ते भी तपस्या, चलते भी तपस्या, बोलते भी तपस्या, नींद में भी तपस्या, नींद में भी आपको कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि हमने बाबा का बच्चा बनकर के बाबा का याद, मुझे एक प्रसंग याद आया, हम दादी प्रकाशमणि जी को लेकर के एक बार जयपुर में जा रहे थे, डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी बुलाया था उनको दादी को सम्मान करने के लिए, और अनायास तो अभी तो आजकल तो ट्रेन थोड़ा चलता है, कुछ तो बहुत पीछे पीछे जाता था हमारा शेड्यूल के प्रकार, उस दिन 11 बजे हो गया अबू रोड में, यहाँ से जयपुर में जाने के लिए फ्लाइट नहीं है, कार में जाना हो तो 7-8 घंटे लगता था, आजकल थोड़ा कम चलता है क्योंकि नेशनल हाईवे अच्छे अच्छे बने, परंतु हम ट्रेन में जा रहे थे, साथ ही रात में 11 बजे ट्रेन बोर्डिंग किया, हम लोग एक ही कूपे में थे फर्स्ट क्लास, साथ में 11 बजे दादी बैठ करके मुरली पढ़ना शुरू किया, मुन्नी बहन सो गया और कौन, दादी भी सो गया, मोहिनी बहन भी सो गया और हम भी ऊपर बर्थ में थे, दादी बैठ करके ऐसे ही बैठे हुए और मुरली पढ़, मैंने बोला दादी आप सो जाओ ना, अभी लेट हो गया, 11:30 बजे हो जा रहा है और आप तो बाबा के सम्मुख में मुरली सुना, सुबह क्लास में सुनाते हैं रोज अमृत वेले, योग के बाद में मुरली पढ़ते कूदे, और शाम के टाइम में भी दादी यीशु दादी के कमरे में बैठती थी, कुछ व्यवहार होता था, कुछ किसी से मिलना और कुछ बातचीत, उस समय में दादी अधिकांश फ्री रहते थे, हम लोग जाते थे दादी को कुछ सुनाने के लिए, कुछ सुनने के लिए और कुछ दादी से मिलने के लिए आदि, उस समय में दादी मुरली पढ़ती थी, मैंने देखा 4 बार डेली बाबा का मुरली पढ़ती थी, सुनाती थी। ऐसा हम टीचर बने, ऐसा हम काम करते हैं नहीं, दादी के अंदर उसी कारण से वो दादी दादी बनी, ताती यज्ञ के निमित्त बने, यज्ञ को संभालने के लिए निमित्त बने, यज्ञ के विकास के लिए निमित्त बने, यज्ञ में इतनी हजारों बहनों को समर्पित करने के लिए निमित्त बने, और इन सबको समर्पित करके उनको अच्छी सेवादारी बनाया, अच्छी सेवादारी ने यज्ञ रक्षक बनाया, और यज्ञ रक्षक बनाया तो आज उनकी फल हम सभी का रहे वास्तव में। इसके लिए क्यों, उनके अंदर मुरली, मुरलीधर के प्रति प्यार, मुरली की शिक्षा उनको कार्यान्वित करना, बाबा ने आज कहा ये कहा हमको करके दिखाना, बाबा ने ये कहा इसको करके दिखाना, जो भी बाबा का मुरली था साकार में उसको प्रैक्टिकल करने के लिए दादी हम सबको प्रेरित करती थी, मोटिवेट करती थी, इंस्पायर करती थी, और साथ साथ में कमजोरी हो तो उसको भी अपनी दृष्टि से, संकल्पों से वरदान देती थी। इसके लिए बहुत हमारे जीवन में अनुभव है। इसके लिए मैं कहने का बात यह है, संगम युग में बाप दादा हमारा साथ है, द्वापर में नहीं, सतयुग में भी नहीं और कलयुग में भी नहीं, संगम युग में हम बच्चों के लिए वरदानी समय है। इस समय में बाप दादा हर बच्चों को अपनी गोद में पालना दे रहे हैं, अपनी कंधे पर उठा के ले जा रहे हैं और अपनी बाहों में बच्चों को पकड़ करके आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए बाबा जो फरिश्ता है, हम भी फरिश्ता बनेंगे तो बाप समान बन सकते हैं, हम भी फरिश्ता बनेगा तो साक्षी होकर के देख सकते हैं, हम भी फरिश्ता बनेंगे तो इस दुनिया का साथी को ओम शांति, हमारा बाप के साथ रहना, हमारा योगी जीवन माना क्या, बाप के साथ रहना, उठते बैठते खाते पीते सोते हम बाबा बाबा बाबा, केवल बाबा शब्द मुख से नहीं है, वो अंदर ही वो संस्कार, अंदर ही वो प्राप्ति का अनुभव, अंदर ही बाबा को धन्यवाद, क्योंकि किसी को भी एक ग्लास पानी भी पिलाता है दुनिया में उनके अंदर से निकलता है धन्यवाद, थैंक्स। कुछ लोग मुख से बोलते हैं, कुछ लोग मुंह ही बोलते हैं, परंतु डेफिनेटली उसके माइंड में एक चेंज, एक पॉजिटिविटी, एक पावर, एक एनर्जी आता है, आता है नहीं आता है, हमको कोई भी कुछ भी देता है तो उसके अंदर उनके प्रति खुशी आता है, उसको धन्यवाद, अब उसके रिटर्न में हम उसको थोड़ा ज्यादा सेवा करो, इसके उसको भला करो, उसकी समस्या का दूर करो, इनको सहयोग दो, इनको आदि आदि, ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आता है, परंतु ये रेसिप्रोकेशन है, हम एक करेंगे तो दूसरा लोग 10 करेंगे, 10 करेंगे तो 100 करेंगे, 100 करेंगे तो 1000 करेंगे, ये साइकिल, ये प्रक्रिया, ये कल्चर, ये कल्चर हम तो आगे बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक दिन हमारा राज्य भी आ जाएगा। और हमारा ये कर्तव्य भी है, बाबा ने खुद का अपना कर्तव्य बच्चों के ऊपर भी रखा है दुनिया में, मुक्ति जीवन मुक्ति देने का कार्य किसका है, बाप दादा, और कोई संत महात्मा नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। और बाबा के साथ हमको मददगार बनना, बाबा को इसके निमित्त बनना, तो हमको भी बाबा के समान फरिश्ता बन करके सदैव दया स्वरूप प्रेम स्वरूप शक्ति स्वरूप बन करके मर्सीफुल फादर की तरह हम भी मर्सीफुल इस दुनिया को गाली देने से कोई फायदा नहीं, और इस दुनिया के कमजोरी को देखने से कोई फायदा नहीं, और इस दुनिया का जो परिवर्तन परिशील हो रहा परिवर्तन हो रहा है उसको देख करके हमको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले ही बाबा ने कहा था कल्प पहले जो हुआ था वही होने वाला। इसके लिए ऐसी करने के लिए हम बाप समान बनेंगे तो जहां भी है बाबा ने हम बच्चों को तीन बाबा ने तिलक भी लगा दिया, स्मृति तिलक, और ताज भी दिया, तख्त भी दिया। आज के संगम युग में तख्त कौन सा है, बाबा का दिल तख्त, ये दुनिया का तख्त, लकड़ी का तख्त, कुर्सी के तख्त ये नहीं है। मंत्रियों का बात अभी देखा है ना, अभी कुछ ही दिन पहले हमारा भारत सरकार के करीब 12 मंत्री 36 मंत्री को चेंज हो गए, कल मंत्री आज मंत्री नहीं है। हम तो 5000 वर्ष हो गए अभी भी हमारे मंदिर में एक हनुमान का मूर्ति को हिला नहीं सकता है, एक गणपति को हिला नहीं सकता है, एक शक्ति को हिला नहीं सकता है। क्यों, बाबा जो आत्मा को वरदान देता है वो अविनाशी देता है, अविनाशी बनने के लिए। इसके लिए बाप दादा ने इस समय में सभी बच्चों को अपने बाहों में स्वागत करता है, अपने वतन में स्वागत करता है, अपने कार्यों में निमित्त बनाता है, और अभी फास्ट गति से चल रहा है परिवर्तन, इतनी फास्ट हो रहा है उसका सोच भी नहीं सकता है, आज क्या था कल क्या है क्या होने वाला। इसके लिए हम बच्चों को भी बाबा को मदद करना है, वो अपने आप को संपूर्ण बनना, अपने आप को बाप समान बनना, और अपने आप को सिद्धि स्वरूप बनना। इसके लिए बहुत बहुत शिक्षा बाबा ने दे दिया, अभी प्रैक्टिकल फील्ड में हम रख करके ऐसा सेवा करना, ऐसा सेवा करने वाले, ऐसे स्वरूप को धारण करने वाले आप सबको अपनी तरफ से अपने दिल से गहराई से बाबा की तरफ से दादियों की तरफ से आपका आवाहन भी करता हूँ मधुबन में, और साथ साथ में आपको बधाई भी देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने हम सबको सुंदर शुभ प्रेरणाएं दी हैं समय के अनुसार कि हम सब अचानक और एवर रेडी के लिए तैयार रहें, दिल से बाबा का शुक्रिया अदा करते रहें, तपस्या की सुंदर गहराई में उतरें, और साथ ही चलते फिरते ही तपस्या नहीं लेकिन नींद में भी हमारी तपस्या चलती रहे, योग निद्रा की हम अवस्था तक पहुंचे, ऐसी सुंदर प्रेरणाएं देने के लिए हम सब दिल से ब्राता जी को एक बार जोरदार तालियों से अपना धन्यवाद अर्पित करते हैं, और अश्योर करते हैं कि आपने जो प्रेरणाएं हमें दी हैं वो हम जरूर अपने हृदय में जीवन में समाएंगे। भ्राता जी और सुमन बहन जी हमारे बीच से विदाई लेंगे क्योंकि भ्राता जी को भोजन करके शांतिवन भी जाना है, तो रहेंगे। तो एक हाथ की ताली से भ्राता जी को हम पुनः पुनः पधारने के लिए आमंत्रित भी करते हैं और दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी आपका। हम सब बैठे रहेंगे, हमें अब कार्यक्रम के अंत की ओर चल रहे हैं, और ये अगले तीन दिन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं हम सब के लिए। लगातार हम सुन रहे हैं कि हमें इन तीन दिनों को यादगार बनाना है, गहराई में उतरना है, फरिश्ते बन के उड़ना है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, शेड्यूल आपका कैसा बनाया गया है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय संजय भाई जी को। संजय भाई जी स्पार्क विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं, 90 में आप बाबा के पास पहुंचे और 92 में ही बहुत जल्दी आपने अपना पूरा जीवन यज्ञ में समर्पित कर दिया, तब से लेकर ज्ञान सरोवर में आप अथक रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, रोटी विभाग में भी आपकी सेवाएं रहती हैं, और साथ ही ज्ञान योग में चूंकि आपकी गहन रुचि है इसलिए बाबा ने आपको स्पार्क के मधुबन कोऑर्डिनेटर का ताज भी पहनाया है। तो अनुरोध करूंगा संजय भाई जी हमें अगले 3 दिनों की रूपरेखा साथ साथ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करेंगे। संजय भाई।
ओम शांति। काफी लंबे समय के बाद बाबा के घर में इतनी रौनक आई है। जिस घर में बच्चे ना हो उस घर में रौनक नहीं रहती है। तो हम लोग बहुत लंबे समय से आप सबका इंतजार कर रहे थे और आखिर आज आप सब वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो बाबा के घर में पहले सबसे पहले आप सब आए हैं। भट्टी के लिए आप सबको अवसर मिला है। अगले 3 दिनों तक हम सब बहुत अच्छी भट्टी करेंगे। आज उसका विधिवत उद्घाटन भी हुआ और उस भट्टी के लिए आप सबको मानसिक रूप से प्रिपेयर भी किया गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके होंगे भट्टी के लिए। संसार में जो हालत इस समय है वो हम सब से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि हम सब परिवर्तन की एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं कष्टदायक है। हमारे लिए उतना नहीं है लेकिन संसार के लोगों के लिए ज्यादा ही कष्टदायक है, क्योंकि उनके पास ये ज्ञान ही नहीं है कि इस दुख की घड़ी के बाद बहुत लंबे समय के लिए सुख का संसार आने वाला है। हमें पता है इसलिए हमारे लिए तो ये कोई बहुत विपदा का समय नहीं है, संसार के लिए है। और हम सब लौकिक प्रवृत्ति में रहते हैं और यदि हमारे आसपास के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर हम पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारे आसपास रहने वाले सारे ज्ञानी नहीं हैं। हमारी विडंबना ये है कि हम उनको ज्ञानी बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये संसार के पार्ट में ऐसा खेल नुदा हुआ नहीं है कि सारे ही ज्ञानी बन जाएं। परंतु फिर भी हमें उनकी मदद तो करनी है और मदद हम तभी कर पाएंगे जब हम समर्थ होंगे। संसार में जब दुख बढ़ता है तो तरह तरह की समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती हैं और आज के समय में खास करके ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसके कारण से लोगों में डिप्रेशन, भय, खास करके अनिद्रा हम लोग यहाँ पर रहते हुए देखते हैं। लोगों के इतने कॉल्स आते हैं, इतनी समस्याएं आती हैं, लोग सो नहीं पा रहे हैं और जब किसी को नींद ना आए तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी सजा और दूसरी नहीं होती है, नींद ना आना। तो लोग अपने पाप कर्मों के कारण, संसार की हालतों के कारण सो नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबकी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें अच्छी निद्रा प्रदान करें। आसपास के लोगों को, कम से कम अपने आसपास के लोगों को तो हम सुख और शांति का जीवन दे पाए, उसके लिए जीवन में तप का बल होना बहुत जरूरी है और उसके लिए आप सब आए हैं। तो आप सब अगले 3 दिनों तक बहुत सुंदर भट्टी करेंगे, जितना हो सके यहाँ से भर करके ले जाएंगे। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण ऐसा नहीं है, आपके पास तमाम तरह की जवाबदारियां हैं, तमाम समस्याएं हैं, आपकी अपनी लौकिक ढेर सारी प्रवृत्तियां हैं और उन सब में रहते हुए, उस एक निगेटिव माहौल में रहते हुए आप उतना नहीं कर सकते जितना आप करना चाहें। परंतु यहाँ आप हर बात से मुक्त हैं और यहाँ पर चारों तरफ सुंदर बिखरा हुआ, शांत, सौम्य और बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ एक वातावरण है। तो आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर के जा सकते हैं जो अगले 1 वर्षों तक आपकी पालना करता रहेगा और आपके आसपास के लोगों की पालना करता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको एजेंडा मिला होगा, आपने पढ़ा भी होगा। जिन्हें झंडा नहीं मिला वो लोग ले लेंगे। तो अगले 3 दिनों के लिए हम आपको कुछ 2-4 सूचनाएं देना चाहेंगे। उससे पहले हम इस झंडा को थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि आपकी दिनचर्या सुबह 3 बजे शुरू होगी। 3 बजे आप सबको उठना है। वैसे तो यज्ञ के नियमानुसार 3:30 बजे उठने का गीत बजता है, लेकिन चूंकि आप एक अलग एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए आए हैं तो आप सब 3 बजे उठेंगे। आपकी दिनचर्या 3 बजे शुरू होगी और रात्रि प्रयास रहेगा कि 8:15-8 तक आपकी दिनचर्या पूरी हो जाए। इस दिनचर्या में जो बनाई गई है एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, बहुत टाइट शेड्यूल नहीं बनाया गया है, ताकि आप सब यहाँ आए हैं तो ज्ञान योग के साथ साथ आप यहाँ के वातावरण का भी अनुभव कर पाए, यहाँ के जो वातावरण में ऊर्जा है उसको सेंस कर पाए और उसे अपने अंदर भर पाए। तो काफी फ्लेक्सिबल एजेंडा बनाया गया है। 3 बजे आप सब उठेंगे, बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे और उसके बाद 3:30 बजे से 4:45 बजे तक सबका सामूहिक योग चलेगा और सारे कार्यक्रम जो भी कार्यक्रम हैं वो सारे के सारे इसी हॉल में होंगे। केवल प्रातः मुरली और मुरली से पहले का योग छोड़ करके, मुरली क्लास और मुरली से पहले का आधा घंटा योग ऊपर के बड़े हॉल में होगा, बाकी सारे दिन की जो दिनचर्या है वो इस हॉल में ही चलेगी। तो ये आप सबके ध्यान में रहे, अमृत बेला भी आपको यहीं पर आना है। तो 3:30 से 4:45 बजे तक हम सब सामूहिक योग करेंगे, उसके बाद स्नान आदि करके 6 से 6:30 बजे तक सामने जो बड़े हॉल के सामने जो प्लाजा है या इस हॉल के सामने जो प्लाजा है वहां पर म्यूजिकल एक्सरसाइज कराया जाएगा। क्योंकि 3 दिनों तक आपको सिर्फ यहाँ बैठना ही है, ना आपको कपड़े धोने हैं, ना खाना बनाना है, ना लौकिक प्रवृत्ति में जाना है, ना बिजनेस, ना नौकरी, बैठ करके साधना करनी है। तो अगर सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो दिन भर के लिए हम चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। तो हमारे साउंड डिपार्टमेंट के सुरेश भाई जी बहुत अच्छा बाबा के गीतों के माध्यम से और म्यूजिक के माध्यम से एक्सरसाइज कराते हैं बहुत ही रमणीक ढंग से। तो 6 से 6:30 बजे तक आप लोग एक्सरसाइज के लिए प्लाजा में इकट्ठे होंगे, उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक ऊपर के बड़े हॉल में योग चलेगा, फिर 7 से 8 बजे तक मुरली चलेगी और मुरली पूरा होने के बाद 8 से 8:15 बजे तक मुरली का रिवीजन उसी हॉल में 15 मिनट के लिए कराया जाएगा। उसके बाद आप लोग नाश्ते पर जाएंगे, 8:15 बजे से लेकर के 9 बजे तक नाश्ता रहेगा, नाश्ते पर आप सब जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से 9:30 बजे आपको यहाँ आना है। 9:30 से 10 बजे तक आधे घंटे के लिए योग चलेगा, कोई ना कोई एक भाई या बहन आपको बहुत सुंदर यहाँ पर रोज नए नवीन ढंग से गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे। फिर 10:00 से 10:15 बजे तक एक क्लास रहेगा। इस बार ऐसा ध्यान रखा गया है कि आपको केवल क्लासेस ना दिए जाएं। आजकल तो क्लासेस इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं, क्लासेस के सोर्सेस बहुत है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर आप क्लास के साथ साथ योग की गहन अनुभूति करके जाएं। तो सुबह और शाम दोनों सत्रों में सिर्फ एक एक क्लास ही रखा गया है, बाकी समय योग का रखा गया है, ताकि आप यहाँ आए हैं तो योग की गहराई में उतर करके जाएं। एक योग की गहन अनुभूति, बाबा कहते हैं योग में अतींद्रिय सुख है। योग एक ऐसा सुख है कि एक बार यदि आत्मा को महसूस हो जाए तो दुनिया के सारे सुख जो हैं भौतिक सुख वो फीके पड़ने लगते हैं। वो सुख अनुभव नहीं होता है, इसलिए हम लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं। तो प्रयास करेंगे कि इन 3 दिनों में हम योग की गहराई में उतरें और उस सुख को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो केवल क्लासेस 2 ही होंगे, बाकी सारा योग का समय रहेगा। फिर 11 से 11:15 छोटा सा ब्रेक रहेगा, फिर 11:30 से 12:30 बजे तक हर रोज नई नई कोई ना कोई एक क्रिएटिव एक्टिविटी कराई जाएगी। फिर उसके बाद 1 बजे से 4 बजे तक आपका लंच और रेस्ट रहेगा, और फिर रेस्ट के बाद आप लोग वापस यहाँ पर चाय वगैरह पी करके 4:30 बजे फिर से यहाँ आएंगे। 4:30 से 5 बजे तक फिर से आधे घंटे का गाइडेड मेडिटेशन रहेगा। फिर 6 से 6:15 क्लास, 6:30 से 6:30 फिर से एक छोटा सा ब्रेक, फिर 6:30 से 7:30 बजे तक नमः शाम का योग। यहाँ पर अमृत वेले का और नमः शाम का योग बहुत विशेष महत्व रखता है यहाँ बाबा के घर में। सारे निवासी सेवादारी भी आप सबके साथ यहाँ सम्मिलित होंगे, तो एक बहुत ही पावरफुल वातावरण होता है। अच्छे अच्छे महारथी योगी भाई बहने कई बार आकर के यहाँ मंच पर बैठ करके हमें योग कराते हैं, तो उसका एक बहुत सुंदर अनुभव आप सब कर सकते हैं। तो ये प्रतिदिन 6:30 से 7:30 का विशेष नमः शाम का योग रहेगा। फिर 7:30 से 8 बजे तक हर रोज किसी दिन बाबा को पत्र कैसे लिखें उस पर कोई न कोई आपको एक एक्टिविटी कराएंगे या आपसे पत्र लिखाया जाएगा। फिर हम कैसे अपनी चेकिंग करें, चार्ट अपना कैसे भरें, तो आधे घंटे का ये जो समय है 7:30 से 8:30 बजे का, तो बाबा को पत्र लिखना, चार्ट चेकिंग, कैसे हम अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाएं आदि आदि, तो इस तरह की ये नवीन कुछ एक्टिविटी कराई जाएगी। और लगभग 8:15 बजे तक आप सबका कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, और 8:15 से 9 बजे तक आप सब भोजन करके फिर अपने अपने ढंग से, फिर कोई यहाँ सेशन नहीं होगा, आप सब यहाँ अलग अलग स्थानों पर कई बाबा के कमरे बने हुए हैं, वहां पर जा करके गुड नाइट मेडिटेशन करेंगे। इसमें तो आपको 9 से 9:30 लिखा हुआ है, आप अपनी सुविधा अनुसार बाबा के कमरे में जरूर जाएं, और ये हमारे दिनचर्या का एक अंग होना चाहिए, एक हमारी आदत सी होनी चाहिए कि हम सोने से पहले बाबा को गुड नाइट करके जरूर सोएं, अपने सारे दिन का हालचाल बाबा को बता करके। तो आप सब गुड नाइट मेडिटेशन करके और फिर अपने कमरे में जाएंगे, विश्राम करेंगे, और आप सबसे ये अनुरोध रहेगा कि 10 बजे तक यदि आप सो जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि सुबह फिर आपको 3 बजे उठना है, तो आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, नहीं तो देर से सोते हैं। मौसम अभी अच्छा है, बारिश का मौसम है, कई बार फॉग आता है, तो लाइटिंग के बीच में फॉग बहुत अच्छा लगता है। आप सब वातावरण का सुख जरूर लें बाबा के घर में, लेकिन समय से सोएं, समय से उठें, नहीं तो फिर योग में नींद आती है। और एक सजेशन ये भी रहेगा कि अमृत वेले जब आप यहाँ आते हैं तो आने से पहले एक पैराग्राफ मुरली का जरूर पढ़ के आए, क्योंकि हम लोग 6-7 घंटे या 5 घंटे जब सोते हैं लगातार, तो हमारा ब्रेन इतना जल्दी एक्टिव नहीं हो पाता है, फिर आकर के यहाँ हम बैठ जाते हैं फिर हमें नींद आती है। अगर एक स्टेंजा, एक पैरा कुछ पढ़ लेते हैं तो ब्रेन हमारा एक्टिव हो जाता है, फिर हम अच्छा योग कर पाते हैं। तो यदि आप ये करें तो बहुत अच्छा होगा, कुछ पढ़ के और फिर आप यहाँ पर आए। तो इस तरह से ये जो हमारी दिनचर्या थी जो 3 दिनों तक चलेगी, चौथे दिन तो आप सबको जाना ही है, तो आपके पास केवल ये 3 दिन ही सुनहरे 3 दिन है। 1 दिन क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रखा गया है, जिसमें सूर्य भाई जी हम सबके साथ बैठेंगे और हमारे प्रश्नों का समाधान करेंगे, तो आप सब उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बेहतर होगा पहले से लिख करके आप रुपेश भाई जी को दे दें, लेकिन ध्यान रहे समस्याएं तो हर एक के पास है, हम अपनी समस्याओं की बातें ही पूछते रहेंगे तो सब समय उसमें ही निकल जाएगा। बेहतर है कि हम पुरुषार्थ के लिए आए हैं तो अपने पुरुषार्थ की बातें पूछें, पुरुषार्थ से रिलेटेड। अगर हमारा पुरुषार्थ गहनता में चला जाता है तो हमारी समस्याएं तो आपे ही ठीक हो जाती हैं। तो हम अपने पुरुषार्थ को एक अच्छी ऊंचाई कैसे दें, उसको सूक्ष्मता कैसे प्रदान करें, ऐसे कुछ प्रश्न हो तो आप सब जरूर इस सेशन का लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी दिनचर्या थी जो रोज की रहेगी, कुछ एक दो सूचनाएं हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। मोबाइल की चर्चा तो बार बार लगभग सबने किया है, तो आप सब 3 दिनों के लिए अगर मोबाइल न यूज करें तो बहुत अच्छा होगा। जिसको भी अपने अपने घरों में सूचनाएं देनी हो आज ही दे दें कि आप बहुत कुशल पूर्वक बाबा के घर में पहुंच गए हैं, आगे 3 दिनों तक आपको कोई डिस्टर्ब न करे। तो इस तरह से आप सूचना दे करके और अपना फोन स्विच ऑफ कर दें, और स्विच ऑफ करके भले अपने पास ही रखें। इससे पहले जो भी भर्तियां हुई हैं हम लोग तो उसमें जमा करा लेते थे, किसी के पास भी मोबाइल छोड़ते नहीं थे, लेकिन अभी हम नहीं ऐसा करेंगे। आप सब स्विच ऑफ करके अपनी ऑनेस्टी के साथ अपने पास रख लें, ऐसा ना हो कि किसी का खुला छूट जाए और यह क्लास के बीच में घंटी बजे और एक साथ 10-20 आत्माएं जो परम धाम योग में पहुंची हों धम से नीचे आ जाएं, तो वो फिर हम सबके पाप के खाते में जाता है। किसी का योग तुड़वाना, किसी को ऊंची स्थिति से नीचे गिराने के निमित्त बनना, ये एक सूक्ष्म पाप है। भले मैं ये बात आपको हंसी में कह रहा हूं लेकिन यही वास्तविकता है। जो हम आत्माओं से कई बार छोटे छोटे ऐसे ही पाप होते हैं, तो हम सब ध्यान रखें कि मोबाइल का प्रयोग ना करें, और अगर करना हो तो यहां से जाने के बाद अति आवश्यक हो तो कमरे में थोड़ा सा कर लें। उसके बाद भोजन की जो आपकी व्यवस्था है वो सारी की सारी व्यवस्था डाइनिंग हॉल नंबर 2 में होगी। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है सारे मील्स आपके वहीं पर रहेंगे, और आप सभी ध्यान रखेंगे कि समय के अंदर आप सब भोजन जरूर कर लें, क्योंकि हर मील के बाद डाइनिंग की सफाई करनी पड़ती है, भोजन समेटना पड़ता है, फिर दूसरे मील की तैयारी करनी पड़ती है। तो सुबह 9 बजे तक, दिन में 1:30 से 2:30 बजे के पहले पहले और रात्रि में 9 बजे तक आप भोजन अपना पूरा कर दें, तो फिर डाइनिंग के भाई बहने निश्चिंत होकर के आगे के लिए अपना तैयारी कर पाते हैं। और चूंकि हम सब भट्टी में आए हैं, आप सब बाबा के घर में आए हैं, आप सब हमारे मेहमान भी हैं और बाबा के बच्चे भी हैं, बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो हमारा भी तो मन होता है कि आपकी खातरी करें। तो आपकी खातरी में कभी खीर बनेगा, कभी पकौड़े बनेंगे, कभी पनीर की सब्जी बनेगी, लेकिन हम सबको ये भी ध्यान रखना है कि हम सब यहाँ तपस्या के लिए आए हैं। पनीर खा करके कितना देर योग कर पाएंगे, पकौड़ा खा करके कितना योग कर पाएंगे, जब पकौड़ा पेट में फूलना शुरू करेगा योग लगेगा। तो बल कुछ भी हो भोजन में, क्योंकि आप आए हैं, हम तो जरूर आपकी खातिरी में बनाएंगे, वरना आप कहेंगे कि हम तो बाबा के घर में गए और ज्ञान सरोवर के भाई बहनों ने तो हमारी खातिरी की नहीं, तो हम तो बनाएंगे। परंतु अनुरोध ये रहेगा कि आप जितना हल्का भोजन कर सके और कम से कम कर सके, अपने शरीर के अनुसार कर सके, योग में उतने गहरे आप उतर पाएंगे। खाना तो जिंदगी भर है, आप सब घरों में अच्छा अच्छा खाते हैं, जाके भी खाएंगे, लास्ट दिन खा ले, लेकिन 3 दिनों में हल्का भोजन रखें तो ज्यादा अच्छा है। आपके जो चाय की व्यवस्था होगी वो डाइनिंग हॉल नंबर 6 के बाहर सबके साथ रहती है, भोजन के साथ सुबह नाश्ते में, और रात्रि में जो चाय रहती है वो तो नीचे ही रहेगा डाइनिंग हॉल 2 में, लेकिन उसके अलावा जो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चाय रहती है, अमृत वेले की चाय, वो डाइनिंग हॉल 6 के बाहर रहेगी। आप सब जब भी क्लास में आते हैं तो अपने साथ नोटबुक पेन जरूर लेकर के आए। ऐसा ना सोचें कि अरे हम तो 60 साल के हैं, 50 साल के हैं, हम कोई स्टूडेंट थोड़ी हैं। आप बाबा के सभी बच्चे किसी भी उम्र के हैं, हम सब बाबा के स्टूडेंट हैं। दीदी का मास चल रहा है ना, मनमोहिनी दीदी का, और दीदी की एक विशेषता थी कि दीदी इस बड़ी आयु में भी एक दिन भी बिना डायरी पेन के कभी क्लास में नहीं जाती थी। सब चीजें मन में याद नहीं रखी जा सकती हैं, इसलिए जो बात जब अच्छी लगे उसे आप लिख लें, वो पूरे साल के लिए आपके पास एक स्टोर्ड खजाना हो जाता है, और जब बीच बीच में उसे रिवाइज करेंगे, उस पर पुरुषार्थ करेंगे, तो हम एक अच्छा पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो आप सब डायरी पेन जरूर लेकर के आए क्लास में, और न हो तो पास में ही हमारा साहित्य विभाग है, वहां से आप खरीद सकते हैं। 3 दिनों तक आपको पूरी तरह मौन में रहना है। इसकी भी चर्चा बार बार की गई है, हमको बिल्कुल नहीं बोलना है, अगर बहुत जरूरी हो तो। कैसे बोलना है, कैसे बोलना है? जैसे देवताएं आपस में बात करती हैं, बहुत धीमी आवाज में, ताकि आपको देख करके दूसरे लोग जो यहाँ है ना, सेवाधारी ज्ञान सरोवर निवासी, उनकी भी वॉल्यूम थोड़ी ढीली हो जाए, कम हो जाए। तो हमें 3 दिनों तक मौन में रहना है, और ये हमारा मौन हमारे मन को शांत और एकाग्र करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खास करके अमृत वेले। बिल्कुल बात नहीं करना है, कई बार शिकायत आती है, लोग अमृत वेले चलते चलते जब आते हैं ना यहाँ तक, बीच में बातें करते हुए आते हैं, जल्दी जल्दी चल करके आते हैं, बहुत तेज नहीं। हमें शरीर का भी मौन इन 3 दिनों में रखना है ना, बहुत तेज नहीं चलना है, बहुत भागते हुए नहीं चलना है, हमें योग युक्त चलना है। भले कई बार 5 मिनट लेट भी हो जाता है, हम भाग भाग करके आते हैं, यहाँ आके योगी तो करना है ना, तो हम कमरे से योग युक्त चल करके आए, दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। अमृत वेले का वातावरण यहाँ बहुत सुगंधित, बहुत पावरफुल होता है, ऐसे में कोई छोटी सी भी आवाज करता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कानों में कोई सुई चुभ रहा हो, इसका भी एक सूक्ष्म पाप बनता है। अमृत वेले बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, इसका हमें ध्यान रखना है। आज आपने खूब ताली बजाई है, कल से क्या करेंगे? कल से अगर ताली बजानी हो तो कैसे बजाएंगे? हाँ, एक हाथ की ताली, हाथ को ऊपर उठा करके। तो कल से आप ताली नहीं बजाएंगे, हमें एक बहुत सुंदर शांति का स्ट्रांग माहौल यहाँ पर 3 दिनों के लिए क्रिएट कर देना है। आप सबने सफेद ड्रेस तो पहना ही है, और जिसने भी नहीं पहना है उससे भी गुजारिश होगी कि अगर संभव हो तो आप सफेद ड्रेस ही पहने, क्योंकि वस्त्र का भी हमारे वातावरण पर असर पड़ता है। मास्क आप लोग लगा के रखें, और जब भी यहाँ बैठते हैं तो एक चेयर का गैप छोड़ करके जरूर बैठें। और एक विशेष विशेष जो हमें ध्यान रखनी है कि इस दौरान आप में से कोई भी फोटोग्राफी ना करे। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, वैसे तो आप सबको मोबाइल स्विच ऑफ रखने का निर्देश दिया गया है, आप फोटो क्यों ना खींचें, क्योंकि अभी भी कोरोना का माहौल बना हुआ है, और गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। हम सब अपने घर में हैं, तो घर में हम अलबेले हो जाते हैं, हम सारे प्रोटोकॉल्स को हूबहू फॉलो नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, घर में चल जाता है, परंतु कई बार देखा गया है, ऐसा हुआ है कि हम फोटो खींच करके उमंग उत्साह से अपने घर वालों को भेज देते हैं, मित्रों को भेजते हैं, और कई बार गलती से यदि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास पहुंच जाता है तो आप तो घर चले जाएंगे 3 दिनों के बाद। उसको निपटाने में हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बीइंग ए बिग इंस्टीट्यूशन, एक संस्था होने के नाते हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो कृपया, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है पीछे भी इसके कारण, तो आप सब फोटो ना खींचें, और अगर कभी खींचा भी तो कभी शेयर ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। आप सब बैच कॉम्प्लेक्स में हैं, तो आप पहन करके रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि जाने से पहले उसे आप रिटर्न करके जाएं, ताकि वो बैच आगे दूसरों को काम आ सके। आप सब 24 घंटा पहले, खास करके टीचर्स बहने, ये जरूर ध्यान रखें कि आप अपने रिटर्न जर्नी के लिए यदि आपको भोजन की व्यवस्था चाहिए तो कम से कम 24 घंटे पहले आप जर्नी फूड डिपार्टमेंट में जरूर डाल दें, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए तो उसकी भी सूचना वो आप हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 24 घंटा पहले जरूर दे दें। और आप में से जो लोग अपने साधन से आए हैं, वो केवल पार्किंग एरिया में ही अपनी गाड़ी को पार्क करें, इधर उधर ना करें, नहीं तो फिर कई बार दिक्कत आती है, फिर अनाउंसमेंट कराना पड़ता है। तो आप अपने व्हीकल्स को अपने पार्किंग एरिया एक दो बने हुए हैं वहां पर ही करें। बाबा के घर में डिस्पेंसरी भी है, भगवान न करे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, वैसे भी कम खाएंगे तो दिक्कत तो होगी नहीं, और यहाँ का वातावरण तो वैसे भी बहुत अच्छा है। आप सब 3 दिनों तक पूरी तरह हेल्दी रहें ताकि योग का सुख लें, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग गर्म वातावरण से निकल करके आए हैं, यहाँ से एकदम ठंडा वातावरण है, यहाँ पर कई बार थोड़ी बहुत कुछ बात होती है। तो निसंकोच रूप से बाबा के घर में डिस्पेंसरी है जिसकी सेवाएं हमेशा उपलब्ध रहती हैं, आप लोग जब चाहें आप वहां जा करके सुविधा ले सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ सूचनाएं थी, और एक विशेष सूचना और ये भी जिसकी जिक्र मृत्युंजय भाई जी ने की कि बाहर जाएंगे तो क्या पकड़ेगा, तो यहाँ हम सब जंगल के बीच में हैं, खास करके अंधेरा होने के बाद आप लोग गेट से बाहर ना जाएं, जाते भी हैं भोजन के बाद कई बार टहलते हैं तो गेट के पास में ही रहें, गेट से दूर ना जाएं, क्योंकि ये जंगली एरिया है और खास करके यहाँ पर हिंसक जानवरों का काफी प्रकोप रहता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि अंधेरा होने के बाद आप लोग कैंपस से बिल्कुल भी बाहर ना जाएं। तो अगले 3 दिनों के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप बाबा के घर से आए हैं तो खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर के जाएं, ताकि इस परिवर्तन की प्रक्रिया में संसार में जो लोग दुखी हैं उनको थोड़ा सा आराम मिल सके। जाना तो सबको ही है, हमको भी जाना है, लेकिन हम सब रोते रोते न जाएं, दुखी होकर न जाएं, अशांत होकर के न जाएं, उसके लिए यहां से एक बेहतर आत्मबल आप सब यहां से भर के जाएं। ओम शक्ति।
धन्यवाद संजय भाई, आपने विस्तार से अगले 3 दिनों की सभी सूचनाएं, सब कुछ स्पष्ट हो ही गया होगा, फिर भी यदि कुछ आवश्यक चीजें आपको जरूरी हैं, आप अपने घर में हैं तो आप अपने टीचर्स को बता सकते हैं, आपकी जरूरतें जो भी हैं वो जरूर पूरी की जाएंगी। तपस्या के साथ साथ कई बार शरीर के लिए भी कुछ आवश्यक चीजें होती हैं, तो यदि आपको लगे तो सब चीजें घर में अवेलेबल हैं, वो आपको जरूर मिलेंगी। अमृत वेले रोज ही सूर्य भाई जी आप सबको कराएंगे, तो ये भी बहुत बड़ा भाग्य है ना, तो अमृत वेले हम बहुत अटेंटिव होकर के अमृत वेले का आनंद लेंगे। कल का अमृत वेला यही रहेगा, कल एक और ग्रुप आने वाला है, यदि संख्या थोड़ी बढ़ती है तो फिर देखेंगे कि ऊपर हॉल में शिफ्ट करना है या यहाँ, लेकिन कल का अमृत वेला यही होगा। और बाकी की जैसे संजय भाई जी ने बताया, केवल मुरली क्लास और योग को छोड़ के सब एक्टिविटीज आपकी यहीं पे रहेंगे। बॉक्स रख दिया जाएगा जो क्वेश्चन आंसर सेशन की बात थी, तो आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे वो भी डाल दिए जाएंगे। अब मैं अंत की ओर बढ़ूंगा और आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी आगरा की तनु बहन को, जो बहुत प्यारा बाबा के याद का गीत हम सबके बीच रखेंगी, और हम सब ने जो सुना है उसे अपने अंतर में समाएंगे, बाबा को दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कल से गहन तपस्या की ओर बढ़ने का संकल्प लेकर के यहाँ से विदा होंगे, शांति से जाकर भोजन पान करेंगे और विश्राम करेंगे। तनु बहन आप मंच पर आए और हम सब एक सुंदर बाबा की याद के गीत के साथ आज के सत्र को संपन्न करेंगे। तनु बहन आगरा से हैं, सेंटर पे ही रहते हैं और रहते हुए वहाँ दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, लौकिक और अलौकिक दोनों, 4 वर्षों से बाबा के ज्ञान में हैं। तो बाबा की प्यार भरी याद का गीत हम सब के बीच रखेंगे और हम सब याद में तल्लीन होंगे। ओम शांति।
ओम शांति। प्रभु की बड़ी नजर के मेरे भाग्य बन गए, प्रभु की बड़ी नजर के मेरे भाग्य बन गए, घर का पता चला, घर का पता चला, ऐसी मिली डगर बन गए, प्रभु की पड़ी नजर की मेरे भाग्य बन गए। भाव से मिली जब पहली बार, उनसे हो गया बेहद प्यार। वापस मिली जब पहली बार, उनसे हो गया बेहद प्यार। बाबा पर है मुझे एतवार, वो ही है मेरा संसार। अब ना कोई फिकर, अब ना कोई फिकर, अब ना कोई फिकर कि मेरे भाग्य बन गए, प्रभु की पड़ी नजर कि मेरे भाग्य बन गए। देख के ज्योति बिंदु को, बिंदु से हो गया स्नेह अपार। देख के ज्योति बिंदु को, बिंदु से हो गया स्नेह अपार। दिल मेरा गाए अब हरदम, बाबा बाबा बारंबार। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ सर कि मेरे भाग्य बन गए, प्रभु की पड़ी नजर कि मेरे भाग्य बन गए। सूक्ष्म वतन मन खिंचने लगा, आत्म पंछी उड़ने लगा। सूक्ष्म वतन मन खिंचने लगा, आत्म पंछी उड़ने लगा। रोक न पाऊं अब खुद को, बन के फरिश्ता मिलने लगा। बाबा से इस कदर, बाबा से इस कदर, बाबा से इस कदर कि मेरे भाग्य बन गए, प्रभु की पड़ी नजर कि मेरे भाग्य बन गए। घर का पता चला, घर का पता चला, ऐसी मिली डगर कि मेरे भाग्य बन गए। ओम शांति।